Ya Rabbi, lakal hamdu kama yambaghi li jalali wajhika wa azim sultanik. Allahumma rabbana lakal hamd bima khalaqtana wa razaqtana wa anqadtana wa farrajta anna. Lakal hamdu bil iman wa lakal hamdu bil islam wa lakal hamdu bil quran. Amma ba'd, fa a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbi shrah li sadri وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي. اللَّهُمَّ ثَبِّتْنَا عِندَ الْمَوْتِ بِلَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ. اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے. آمین یا رب العالمین. سورۃ الملک کی آیت نمبر 8 ہم انشاءاللہ شروع کریں گے. 7 تک ہم نے مکمل کر لیا تھا. سیکنڈ پارٹ سورہ ملک کا چل رہا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اس جگہ پر جہنم میں جانے والے لوگوں کی گرافک پکچر دی ہے. آیت نمبر 8، تکاد تمیز من الغیظ، قریب ہے کہ جہنم جو ہے وہ آلموسٹ ایکسپلوڈ ہو جائے گی. کلما القیہ فیہا فوجن سألہم خزانتہا، جب بھی کوئی گروہ، جب بھی کوئی فوج، جب بھی کوئی ایک میسو گروپ جہنم میں ڈالا جائے گا، تو جو جہنم کا کیپر گارڈ ہوگا یا جو گارجین ہوگا، وہ ان سے سوال کرے گا، الم یاتیکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی وارن کرنے والا نہیں آیا تھا؟ تو یہاں پر ایک اور تصویر آپ کو، ایک بہت گرافک تصویر، ویوڈ ڈسکرپشن جو ہے وہ جہنم کا مل رہا ہے. تکاد تمیز من الغیظ، قریب ہے کہ جہنم پھٹ جائے گی، یعنی آگ کی انٹینسٹی کو مینشن کیا گیا ہے. آگ کی انٹینسٹی کیا ہوگی؟ کہ آگ اتنی بڑھے گی، اتنی زیادہ بلیزنگ فائر ہوگی کہ ایسے لگے گا کہ جہنم ابھی کسی وقت بھی ایکسپلوڈ کر جائے گی. آگ اتنی پھیلے گی کہ لگے گا کہ جہنم اس کو کنٹین نہیں کر سکے گی، لیکن جہنم آگ کو کنٹین کرے گی، اس لیے کہ اس کنٹینر کے اندر اس کی ہیٹ کو مینٹین کرنا ہوگا. تکاد تمیز من الغیظ، یہ عرب بہت اچھی طرح سمجھتے تھے، اس لیے کہ یہ محاورہ استعمال کیا کرتے تھے اپنی کلاسیکل لینگویج میں. اینشینٹ عربس اس جملے کو ایز اے محاورہ، ایز اے فگیوریٹو سپیچ استعمال کرتے تھے. وہ کہا کرتے تھے یکاد یتمیز من الغیظ، کسی انسان کو جب یہ کہنا ہو کہ اتنا غصہ اس کو آ رہا ہے، ہی ول آلموسٹ ایکسپلوڈ، پھٹ جائے گا. جیسے اردو میں نہیں ہم کہتے کسی انسان کا آگ بگولا ہو جانا، تو آگ بگولا ہو جانا کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ خدا نخواستہ ان کو آگ لگی ہوئی ہے. آپ کہتی ہیں فلاں مجھے دیکھ کر جل گئیں. اب وہ جل گئیں کا مطلب خدا نخواستہ کوئی تھرڈ ڈگری سیکنڈ ڈگری برن نہیں ہو گیا ان کو، ایک محاورہ ہے کہ بہت سخت ان کو تکلیف ہوئی. تو جب عرب یہ جملہ استعمال کرتے تھے، مطلب ہوتا تھا کسی انسان کو جب اتنا غصہ آتا ہے کہ ہی از اباؤٹ ٹو ایکسپلوڈ، لگے گا بس ابھی پھٹ جائیں گے، بالکل یہی والا جملہ اللہ تعالیٰ نے جو عرب استعمال کرتے تھے جہنم کے لیے استعمال کیا. ظاہر ہے عرب نے جب یہ سنا تو ان کو اندازہ ہو گیا، جیسے انسانوں کے لیے وہ کہتے تھے کہ اتنا غصہ آ رہا ہے کہ آؤٹ آف ریج پھٹ جائے گا، ایکسپلوڈ ہو جائے گا. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا تھا کہ سچ مچ کوئی خدا نخواستہ اس کی باڈی جو ہے وہ مختلف فریکشنز میں ڈیوائڈ ہو جائے گی. کہنے کا مطلب ہوتا تھا غصے کا اظہار کرے گا. تو جہنم کا یہ ڈسکرپشن اہل عرب فوراً سمجھ گئے تھے کہ وہ اتنی غصے والی جگہ ہے، وہ اتنی زیادہ بلیزنگ فائر کی جگہ ہے، وہ اتنی بڑھتی ہوئی رائزنگ فلیم کی جگہ ہے کہ لگے گا کہ جیسے پھٹ جائے گی، اتنی ہیٹ ہو گئی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ اس کی ہیٹ کو اس کے کنٹینر میں کنٹین کروائیں گے، بالکل جیسے ہم نے پڑھا تھا پیچھے کہ موت اللہ کی مخلوق ہے، اسی طرح سے جہنم اللہ کی مخلوق ہے. اللہ نے جتنی مخلوقات بنائی ہیں اس میں سے جہنم اللہ کی تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ خطرناک اور ڈینجرس مخلوق ہے. موت سے بھی زیادہ خطرناک جہنم ہے. جہنم کے لیے اگر آپ قرآن اور احادیث کا ایسنس اکٹھا کریں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جہنم کے اندر فیلنگز ہیں. جہنم کی جو آگ ہے اس میں فیلنگز ہوں گی. جہنم اپنے شکار کو دیکھ کر، اپنے پرے کو دیکھ کر سٹیئر کرے گی. قرآن کی آیت کا مفہوم آتا ہے کہ جہنمی کو جب دیکھے گی جہنم دور سے، تو اس کو دیکھ کر زفیرہ چنگھاڑے گی، جیسے کوئی وائلڈ بیسٹ جو ہے وہ چنگھاڑتا ہے، وہ اس وقت شاؤٹ کرتا ہے. تو جہنم کے اندر فیلنگز ہیں. جہنم اپنے دشمنوں کو پہچانے گی. جہنم روز محشر بولے گی، جیسے قرآن میں آتا ہے سورہ قاف کی آیت نمبر 30 میں، یوم نقول لجہنم، جس دن ہم جہنم سے کہیں گے ہل امتلأتی، کیا تم بھر گئی ہو، وتقول ہل من مزید، اور جہنم بولے گی کیا اور بھی ہیں. تو جہنم اللہ کی مخلوق ہے. جہنم اللہ کی مخلوقات میں سب سے خطرناک مخلوق ہے. जहन्नुम की आग में फीलिंग्स हैं, जहन्नुम अपने दुश्मन को स्टेयर करेगी, जहन्नुम अपने अंदर आने वाले जहन्नमी को स्टेयर करेगी, देखेगी और जहन्नमी गुफ्तगु करेगी रोज़े महशर के दिन। जब उससे पूछा जाएगा क्या तुम भर गई, तो वो कहेगी कि क्या और भी हैं। अगर कोई इंसान कहे कि ये कैसे मुमकिन है, सिर्फ उसको थोड़ा सा अपनी अकल को इस्तेमाल करके अल्लाह के कलाम के सामने बैठने की ज़रूरत है। अल्लाह के कलाम में आप सिर्फ और सिर्फ ये जहन्नम और मखलूक़ात और दुनिया और जन्नत की हकीकत नहीं सुन रहे होते हैं, आपकी इंटेलेक्ट इसके साथ अटैच हो रही होती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना वक्त नहीं लगाते थे सूरतों के ऊपर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह मुल्क की 30 आयतें पढ़ी और जो अरब और जो सहाबा थे उनको समझ आ गए कि अल्लाह के रसूल क्या बताना चाह रहे हैं। आप क्यों मेरी तरह एक एक आयत पर चार चार दिन और पाँच पाँच दिन नहीं लगाने पड़ते थे उनको? लेकिन ये कॉन्टेंट कुरान के अंदर मौजूद है जिसके ज़रिए आपसे इतनी लंबी बात की जा रही है। कुरान सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिप्शन नहीं देता, कुरान हर अपने रीडर की इंटेलेक्ट को अपने साथ इंटैक्ट करता है। शर्त सिर्फ यह है कि पढ़ने वाला, सुनने वाला, रीडर, ऑडियंस इसके सामने न्यूट्रल होकर बैठे और सुनने के लिए तैयार हो। तो अल्लाह की मखलूकात किस तरह से फीलिंग्स रखती हैं ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। बिल्कुल जैसे अल्लाह की तमाम मखलूकात तस्बीह करती हैं और अल्लाह बेहतर जानता है कि कौन सी मखलूक कैसे तस्बीह करती है। इसी तरह से उलमा कहते हैं कि जहन्नुम का ये जिक्र सुन के कि जहन्नुम की आग में फीलिंग्स होंगी, हमारा ये ईमान है कि जैसे जहन्नुम अल्लाह से बात करेगी, हमारा ये ईमान है जैसे अल्लाह की मखलूकात तस्बीह करती हैं, इसी तरह से तमाम मखलूकात के अंदर फीलिंग्स भी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम आता है, आपने फरमाया ओहद पहाड़ हमसे मोहब्बत करता है और हम इससे मोहब्बत करते हैं। अब ओहद पहाड़ की ये फीलिंग्स मोहब्बत वाली कैसी हैं और वो कैसे मोहब्बत करता है, ये आपके और मेरे लिए डिस्क्राइबेबल आसानी से नहीं हो सकता। लेकिन क्योंकि हमारे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया, तो हमारा ईमान है कि जब वो कह रहे हैं तो इसमें हक बात होगी। बिल्कुल जैसे हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपने कुरान से ये बात सुनी, अपने रसूल से ये बात सुनी और ट्रेडिशन से ये बात हम तक फिल्टर डाउन होते हुए आ रही है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका गया था। फिजिकल पावर आग की ये है कि आग सबको जला देती है, और जिस तरह की फायर उन्होंने बनाई थी कि वो कमरे के साइज की पूरी जो थी वो बॉनफायर थी, इतनी दूर से उनको कैटापोल में डाल के इब्राहिम अलैहिस्सलाम को फेंकना पड़ा था क्योंकि उसकी हीट बहुत दूर तक आ रही थी। बाज़ नरेशंस बताते हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को फेंकने के लिए जो आग तैयार की गई थी, अगर उसके ऊपर से कोई परिंदा उड़ता हुआ गुजरता था तो फ्रोस्ट होके उसके अंदर गिर जाता था, इतनी ज्यादा उसकी इंटेंसिटी थी। उसी आग में इब्राहिम अलैहिस्सलाम को फेंका गया, क्या हुआ इब्राहिम अलैहिस्सलाम को? जिन रस्सियों से इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उनकी कौम ने बांधा था, हाथ पांव बांधे हुए थे ना, कैटापोल पे बांधा था। कैटापोल कैसा था? एक दरख्त के तने के साथ उन्होंने एक अपना कैनन बना के उसके ऊपर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बांध के जैसे बॉम्ब फेंकते थे कैटापोल पे, ऐसे उन्होंने फेंका था। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हाथ पांव उन्होंने बांधे हुए थे। जब आग में फेंका तो आग की इंटेंसिटी जितनी भी थी, रस्सियां जल गई लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कोई नुकसान नहीं हुआ। इसलिए कि अल्लाह ताला ने कुरान में क्या कहा है, हमने आग से कहा, सूरह अंबिया में आता है आयत नंबर 69 में, कुलना या नारुकूनी बर्दन व सलामन अला इब्राहिम, ए आग ठंडी हो जा और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए सलामती बन जा। तो उस आग को अल्लाह ने मोहब्बत की फीलिंग्स दे दी थी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए। अल्लाह जो चाहता है वो करता है। अल्लाह ने अपनी मखलूकात के अंदर फीलिंग्स रखी हैं। जहां अल्लाह ने आग में रेज रखा है, जहां अल्लाह ने आग में टेम्परेचर रखा है, जहां अल्लाह ने आग में हीट रखी है, अल्लाह जब चाहे अल्लाह इस आग की हीट, गुस्से, गैस और रेज को मोहब्बत के एलिमेंट में बदल दे। इसीलिए हम आयत पढ़ते हैं सूरह मरियम की आयत नंबर 71, जिसमें आता है कि हर इंसान विदाउट एक्सेप्शन, हर इंसान उसको आग के ऊपर से गुजारा जाएगा। उलमा के मुताबिक, बास मुफस्सिरून के मुताबिक, ये वक्त जिसको सूरह मरियम आयत नंबर 71 में मेंशन किया गया है, ये सिरात का वक्त होगा। सिरात जहन्नुम के ऊपर कायम किया जाएगा, जहन्नुम के ऊपर सेट किया जाएगा, और विदाउट एनी एक्सेप्शन हर इंसान इस जहन्नुम के ऊपर जो सिरात, जो ब्रिज कायम किया जाएगा, इसके ऊपर से गुजरेगा। सूरह मरियम की आयत नंबर 71 में आता है, वा इन मिनकुम इल्ला वारिदुहा काना अला रब्बिका हतमन मक़दिया, तुम में से हर एक को इसके ऊपर से गुजरना है और ये अल्लाह की डिवाइन डिक्री है। इट्स हतमी बात, इट्स अ डिक्लेयर्ड थिंग, इट हैज टू बी फुलफिल्ड, हर एक को गुजरना है। एक रिवायत में आता है कि एक मरतबा हजरत आयशा रदी अल्लाह अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसी आयत के बारे में सवाल किया। جب یہ آیت حضرت عائشہ نے پڑھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کیا رسول اللہ کیا ہر ایک اس آگ کے اوپر سے گزرے گا؟ آپ نے کہا ہاں. آپ کی حدیث کا مفہوم آتا ہے آل آف اس, ہم سب گزریں گے. صرف فرق یہ ہوگا کہ وہ گزرنے والے جو اللہ سے محبت کرتے تھے دنیا کی زندگی میں اور جن سے اللہ محبت کرتا ہے, جب وہ اس صراط کے اوپر سے گزریں گے تو اللہ اس آگ کو ان کے لیے ایسے ہی کمفرٹیبل کر دے گا جیسے کہ اللہ نے اپنے حبیب ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو ٹھنڈا کیا تھا. تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جب ہم اس صراط سے گزریں ہمارے لیے بھی اس آگ کو ویسے ہی ٹھنڈا کر دیجیے گا, ویسے ہی کمفرٹیبل کر دیجیے گا جیسا کہ آپ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس کو کمفرٹیبل کیا تھا. ہاں, اس کی شرط ہے, کنڈیشنل ہے یہ بات, آگ کا ٹھنڈا ہونا صراط کے اوپر یا انکنڈیشنل ہے؟ کنڈیشنل ہے. ابراہیم علیہ السلام کا ایمان ہم جانتے ہیں, ابراہیم علیہ السلام کا توحید پر جمنا ہم جانتے ہیں, ابراہیم علیہ السلام کا ہر طرح کی شرک سے اپنی زندگی کو پاک کر دینا ہم سمجھ سکتے ہیں, ابراہیم علیہ السلام کا اللہ کے عشق میں اپنی دنیا کی ہر نعمت کو چھوڑ دینا ہم اچھی طرح سے اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں. ہمارے لیے آسان نہیں ہے. ہاں, یہ دعائیں مانگتے ہیں ہم ضرور اس لیے کہ ہم کمزور انسان ہیں, دعا مانگنا ہمارا کام ہے, لیکن یاد رکھیں اللہ کو صرف ہماری دعا نہیں, اللہ کو صرف ہمارا دعویٰ نہیں, اللہ کو ہماری مینیفیسٹیشن عمل میں بھی چاہیے, اللہ کو ہماری محبت اور توحید عمل میں بھی چاہیے. تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جب یہ وقت آئے ہم اس وقت اس آگ کو اپنے لیے محبت کی فیلنگز کے ساتھ محسوس کریں, اور اللہ ہم اس دنیا میں ہمیشہ ہر عمل کرتے ہوئے اس کانسیپٹ کو ذہن میں رکھیں کہ ہم نے اپنے ہر عمل سے اپنی طرف سے کوشش کر کے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے دور کرنا ہے. ہمارا ہر عمل یا ہمیں جنت کے قریب کرتا ہے یا ہمیں جہنم کے قریب کرتا ہے, اور چوائسیز ہماری ڈیسائیڈ کرتی ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. تو یہ جہنم کا ایک ڈینجرس مخلوق ہونا مختلف اینگل سے واضح کرنا وہ آپ کو اس مقام پر مل رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ آگ, یہ جہنم, یہ جہنم کی سختی, یہ جہنم کا غضب تیار کیا ہے للذین کفروا کے لیے. اور کل آپ کو بتا دیا تھا للذین کفروا وہ ہیں جنہوں نے اللہ کو ریکگنائز کر لیا, جنہوں نے اللہ کو مانا اللہ کی بات کو نہیں مانا. کفر ہوتا وہی ہے کہ جب انسان اپنے آپ کو اس لیول پر لے آئے کہ حق کو پہچان جائے لیکن پھر حق کا انکار کرے. تو یہ تمام سزائیں ان لوگوں کے لیے ہیں جنہوں نے اللہ کو مانا یا اللہ کو پہچانا, اللہ کی بات نہیں مانی. یہ تمام سزائیں ان لوگوں کے لیے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں جاننے کے باوجود گناہ کا لائف سٹائل نہیں چھوڑا. بعض اوقات زندگی میں کوئی ایک گناہ ہوتا ہے, وہ ایک گناہ انسان کو جہنم میں گرانے کا سبب بن سکتا ہے. مومن کو جب پتہ چل جائے کہ اس کی زندگی میں ایک چیز گناہ ہے, وہ اپنی زندگی سے اس کو اومٹ کرنے کی کوشش کرنا شروع کر دیتا ہے. جس وقت احساس ہو جائے, چاہے قرآن کی کلاس میں بیٹھے بیٹھے احساس ہو کہ میری زندگی کا یہ عمل پرابلمٹک ہے, اسی وقت اپنے عمل کو ٹھیک کر لیجیے. آخر ابراہیم علیہ السلام کی قوم کو بھی تو مومنٹ آف کلیئرٹی ملا تھا نا, جب ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا تھا ان کے, اور وہ جو ایکس تھا, کلہاڑی جو تھی, وہ بڑے والے بت کے کندھے پہ لا کے رکھ دی تھی, اور جب لوگوں نے کہا تھا کہ آپ بتائیں ابراہیم یہ کس نے ہمارے بتوں کا یہ حال کیا ہے, ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا اس بڑے سے پوچھ لو اگر یہ بول سکتا ہے. تو قرآن میں آتا ہے فراجعوا الی انفسہم انکم لظالمون. ایک لمحے کے لیے تو ان کو خیال آیا تھا, فراجعوا الی انفسہم, دا مومنٹ آف کلیئرٹی ان کو ملا تھا کہ صحیح تو کہہ رہا ہے یہ نوجوان. جو لوگ, جو بت اپنی پروٹیکشن نہیں کر سکتے وہ ہماری پروٹیکشن کیسے کر سکتے ہیں؟ جو بت بول نہیں سکتے وہ ہمیں کیسے جواب دے سکتے ہیں ہماری جواب دعاؤں کے اوپر؟ تو مومنٹ آف کلیئرٹی ملا تھا ابراہیم علیہ السلام کی قوم کو بھی, لیکن پھر کیا ہوا, اس کے بعد کیا ہوا؟ اس مومنٹ آف کلیئرٹی پر انہوں نے اپنے عمل کو درست کیا یا بیک ٹو اسکوائر ون ہو گئے؟ بیک ٹو اسکوائر ون ہو گئے. ہمیں بھی کئی مرتبہ قرآن کی کلاسز میں کسی آڈیو کو سن کر, کسی ویڈیو کو سن کر, کسی کتاب کو پڑھ کر, کبھی قرآن کی تفسیر پڑھ کر, کبھی کسی دعا کو مانگتے ہوئے, کبھی کسی قیام میں کھڑے ہوئے, کبھی کسی قیام میں تراویح میں امام صاحب کی تلاوت کو سنتے ہوئے مومنٹ آف کلیئرٹی ملتا ہے. دل میں خیال آتا ہے اچھا اب میں نیک بنوں گی, دل میں خیال آتا ہے اچھا اب میں اپنا یہ گناہ چھوڑ دوں گی. دل چاہتا ہے نیک بننے کا, پر پھر کیا ہو جاتا ہے اگر وہ دل چاہنے کو عمل میں فوراً مینیفیسٹ نہ کیا جائے اور ڈیلینگ ٹیکٹس پہ زندگی گزاری جائے کہ اچھا کل کر لوں گی, پرسوں کر لوں گی, دو سال بات کر لوں گی, دس سال بات کر لوں گی, تو پھر وہ ہدایت آہستہ آہستہ ہاتھ سے چھوٹ جاتی ہے. بالکل جیسے ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے ہاتھ سے یہ مومنٹ آف کلیئرٹی جو تھا یہ چھوٹ گیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں سزا بتائی ہے ان لوگوں کی جنہوں نے حق پہچانا تھا لیکن پہچاننے کے بعد انکار کیا, اسی کو کفر کہتے ہیں. और यही क्लैरिटी यहाँ पर सूरह मुल्क में बताई गई है कि अल्लाह ताला हर जहन्नमी को जिसको जहन्नुम में डालेगा उसको ये मोमेंट ऑफ क्लैरिटी अपनी जिंदगी में मिला होगा। ये हमारे बिलीफ का हिस्सा है कि कोई ऐसा जहन्नमी नहीं होगा। दिस इज पार्ट ऑफ आर अकीदा। कुरान की मुख्तलिफ आयात, रसूलुल्लाह की मुख्तलिफ अहादीस इस चीज को वाजे करती हैं कि कोई ऐसा जहन्नमी नहीं होगा जो उस वक्त जहन्नुम के बाहर खड़े होकर ये समझेगा अना मजलूमुन, मुझे तो खामखा जहन्नुम में डाल दिया, मैं तो बेकसूर हूं। जहन्नुम में कोई ये नहीं समझेगा। जहन्नुम में हर इंसान को मालूम होगा कि उसको किस गुनाह की वजह से जहन्नुम में डाला जा रहा है, वो किस वजह से जहन्नुम डिजर्व करता था, उसको अपने गुनाह उसको अपनी गलतियां वाज़े तौर पर नजर आ रही होंगी। तो कुल्लमा उल्किया फीहा फौजुन, जब एक मैसिव ग्रुप को उसमें डाला जाएगा, आप फौजुन का लफ्ज यहां पर देख रहे हैं, ताइफा नहीं आया यहां पर, जमात नहीं आया यहां पर, ग्रोह नहीं आया। फौज कहते हैं मैसिव ग्रुप को। कुल्लमा उल्किया, और उल्किया से कुछ याद आया कल वाली बात, ट्रैश की तरह जब फेंका जाएगा, जब भी किसी ग्रुप को, जब भी किसी मैसिव ग्रुप को ट्रैश की तरह आग में फेंका जाएगा, जहन्नुम में फेंका जाएगा, उसकी बात हो रही है। यानी नंबर एक, फौज से मुफस्सिरून ये बात मेंशन करते हैं कि हर इंसान ये बात याद रखे कि अगर गुनाह करने में उसके साथी बहुत हैं, अगर जिंदगी की नाफरमानियों वाले लाइफस्टाइल में उसके फॉलोअर्स बहुत हैं, अगर जिंदगी में उसको अपना नंबर अपने साथ अल्लाह की नाफरमानी करते हुए बहुत सो का नजर आता है, दैट वी आर इन अ मेजोरिटी, आखिर अल्लाह इतने लोगों को जहन्नुम में डालेगा कैसे। अगर कोई इंसान ये समझता है कि मेजॉरिटी इज द अथॉरिटी और इस चक्कर में वो उस कम माइनॉरिटी का हिस्सा नहीं बनता जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल और सहाबा के अमल पर चल रहे हैं, तो वो सब सुन लें, अल्लाह को नंबर बॉदर नहीं करता। अल्लाह हजारों क्या लाखों क्या, अल्लाह बिलियन के बिलियन को जहन्नुम में डाल देगा। इसीलिए यहां पर आया है फौजुन का लफ्ज, मैसिव ग्रुप्स को जब डाला जाएगा, और ये मैसिव ग्रुप इंसानों का एक नहीं होगा, कुल्लमा जब भी डाला जाएगा, यानी एक के बाद एक मैसिव ग्रुप जहन्नुम में डाला जाएगा। तो अल्लाह को नंबर प्रेशराइज करने के लिए कभी कोई इंसान इस्तेमाल ना करे, वाजे कर दिया गया। जब भी कोई ग्रुप डाला जाएगा, कुल्लमा उल्किया फीहा फौजुन, एक और एंगल जो मुफस्सिरून मेंशन करते हैं इस फौजुन के अंदर, फौजुन का एराब तनवीन का है। अब वैसे अक्सर लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह ये बात मालूम है कि जब आप किसी लफ्ज के आखिर में दो पेश, दो जबर, दो जेर देखती हैं तो उसको तनवीन कहते हैं। तनवीन वाला इसम ज्यादातर, नॉट एवरी टाइम, ज्यादातर कॉमन नाउन होता है, इसम नकेरा जिसको कहते हैं। अल्लाह ताला ने यहां पर कहा है चाहे कितना भी बड़ा ग्रुप था, चाहे कितने फेमस लोग थे, चाहे तुम्हारी फैन फॉलोइंग जितनी भी थी, अल्लाह की नजर में यू आर अननोन, फौजुन कॉमन नाउन। अल्लाह ने यह नहीं कहा जब भी किसी द ग्रुप को डाला जाएगा, अल फौज नहीं कहा, फौजुन जब भी किसी भी ग्रुप को डाला जाएगा, इसका मतलब है अल्लाह की नजर में नाफरमान लोग कोई वैल्यू नहीं रखते। दुनिया में फेम रखने वाले, दुनिया में इज्जत रखने वाले, दुनिया में मुकाम रखने वाले आखरत में अल्लाह की नजर में अननोन होंगे, अल्लाह को उनके दुनिया की पोजिशन की कोई कदर नहीं है। तो यहां मेंशन क्या किया गया, वो लोग जो समझते हैं कि आज दुनिया में आप और मैं, या वो लोग जिनका खास तौर पर पॉइंट ऑफ व्यू ये होता है कि हम दीन पर अमल नहीं कर सकते, हमारा एक स्टेटस को है, हम दीन पर अमल नहीं कर सकते इसलिए कि हमारी एक पोजीशन है, हम इस तरह से दीन को आज 1450 साल पुराने तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, ये ऑब्सोलीट है जिस सर्कल में हमारा उठना बैठना है, आज हमारे लिए दीन पर उस तरह से इम्प्लीमेंटेशन प्रैक्टिकल नहीं है इसलिए कि हम एक डिवेलप्ड लाइफ स्टाइल को गुजार रहे हैं। जिनका ये माइंड सेट है वो सब ये बात सुन लें, जिन्होंने शरीयत का इनकार किया है इस सोच के साथ कि अगर हमने शरीयत पर अमल किया तो यह हमारी दुनिया की तरक्की के रास्ते में रुकावट होगा, हम क्योंकि इस स्कूल में पढ़ते हैं, इस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो हम ये गेटअप अडॉप्ट नहीं कर सकते, हम क्योंकि इस ऑफिस में जॉब करते हैं तो हम ये तरीकाकार अपनी ड्रेसिंग का नहीं रख सकते, क्योंकि हम इस सोशल सर्कल में उठते बैठते हैं तो हमारे इतने ऑब्सोलीट बुरखे नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हमारा उठना बैठना ऐसे लोगों के साथ है, अब हम हर पार्टी को इग्नोर नहीं कर सकते, चाहे हमें किसी भी सेलिब्रेशन के लिए बुलाया जाता है हम नहीं इनकार कर सकते, हमारा बिजनेस सर्कल ऐसा है हमें मजबूरी में गजल नाइट्स में और म्यूजिक कॉन्सर्ट्स में जाना पड़ता है। जो लोग भी अपने साथ किसी भी किस्म की मजबूरी का टैग, दुनियावी मजबूरी का टैग लगाते हैं और अल्लाह की नाफरमानी में किसी न किसी एसेंस में इन्वॉल्व होते हैं, वो सब ये बातें सुन लें कि जिन्होंने दुनिया की शोहरत के लिए, दुनिया के नाम के लिए दीन को साइडलाइन किया था, दीन को बैक बर्नर पर रखा था, क़यामत के दिन वो अननोन होंगे, कोई उनको नहीं जानेगा, किसी को उनकी परवाह नहीं होगी, कोई उनकी कदर और उनकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा, दुनिया के विनियर्स दुनिया में ही रह जाएंगे। क़यामत के दिन ऐसे तमाम नाफरमान अल्लाह के लिए और तमाम उस वक्त की उम्मत के लिए अननोन होंगे। और अगर थोड़ा सा भी इंसान तफक्कुर के साथ सूरह मुल्क को एक दूसरी आयत से इंटरकनेक्ट करे, जिस इंसान की जिंदगी में अल्लाह वो बाबरकत हस्ती नहीं थी, जिस बाबरकत हस्ती के साथ इताअत को कॉन्स्टेंटली अटैच किया जाता, जिसकी जिंदगी तबारकल्लज़ी से नहीं जुड़ी, उसको बका कैसे मिल सकती है? जिसकी जिंदगी में अल्लाह का नाम कनेक्टेड नहीं था, जिसकी जिंदगी में अल्लाह की दी हुई शरीयत कनेक्टेड नहीं थी, उसको आखिरत में स्टेबिलिटी कहाँ से मिल सकती है? तो जब आपको दुनिया, दुनिया की मशहूरी, दुनिया की शोहरत, दुनिया का माल, दुनिया की नामवरी, दुनिया का स्टेटस अल्लाह की नाफरमानी की तरफ लेकर जाए, तो बस ये एक जुमला पढ़ लिया करें, कुल्लमा उल्किया फीहा फौजन, जब भी कोई उसके अंदर नाफरमान ग्रोह डाला जाएगा, शायद फिर अमल के लिए 2% सही, 1% सही, 0.5% सही कदम तो उठेगा, आगे तो बढ़ेंगे। अल्लाह की नाफरमानी की जस्टिफिकेशन मोमिन नहीं देता कभी भी, इसलिए कि उसको अल्लाह की नाफरमानी करनी नहीं होती। अल्लाह के लिए ऐसे नाफरमानों की कोई वैल्यू नहीं है, उनका नाम मेंशन करना तो दूर की बात, अल्लाह ने उनको प्रॉपर नाउन बनाने की भी रिस्पेक्ट नहीं दी, अल फौज भी नहीं कहा, अल्लाह ने उनको कॉमन नाउन बना दिया, उनको इतना ही अल्लाह ताला ने मामूली कर दिया। और दुनिया में जो लोग अपने आप को अक्सर और बेशतर हाई पेडिस्टल पर समझते हैं, अल्लाह ताला ने उनकी इनसिग्निफिकेंस वाजे कर दी। बाज़ोकात इंसान अपने आप को बहुत इलीट समझता है खुद से, इंसान खुद से अपने आप को एक मुकाम पर समझने लग जाता है। अल्लाह की नज़र में रोज़े महशर के दिन उसके इनसिग्निफिकेंस वाजे होना तो दूर की बात है। बहुत से ऐसे इंसान जो अपने आप को अपने तकब्बुर की वजह से दुनिया में कुछ समझते हैं, अल्लाह दुनिया में ही उनको उनकी हकीकत दिखा देता है। अगर आप खास शान नज़ूल के हिसाब से मक्की दौर को देखें, अरब अपने आप को बड़ा लीडर और बड़े इलीट समझते थे, विद इन अरब्स अपने आप को बड़ा आला कस्टोडियन समझते थे काबा का, लेकिन उनके दोनों नेबर्स में पर्शियन एम्पायर और रोमन एम्पायर जो थे, उनकी नज़र में ये अरब कीड़े मकोड़े थे, इसलिए कि ना इनके पास कोई मिलिट्री पावर थी, ना इनके पास रिसोर्सेज थे, ना इनके पास जो था वो कोई फंडामेंटल स्ट्रक्चर था, इंफ्रास्ट्रक्चर था इलाकों का और रहन सहन का। उसी वक्त, अभी तो अल्लाह के सामने जाकर खड़े भी नहीं हुए, उसी वक्त इनको ये हकीकत अगर याद आती और ये कुरान की जुबान से समझते, तो इनको बताया गया है कि अल्लाह के सामने खड़े होना तो दूर की बात, अपने जैसे इंसानों के सामने भी बाज़ों का जब इंसान अपने आप को किसी के सामने हाई पेडिस्टल पर रख रहा होता है, किसी की नज़र में बिल्कुल इनसिग्निफिकेंट होता है, कोई वैल्यू नहीं रखता है। तो अल्लाह ने वाजे किया है, जो जागना चाहता है उसको जगाने के लिए कुरान की एक आयत काफ़ी होती है, जो पलटना चाहता है उसको कुरान का एक जुमला पलटा लेता है, जो सीधे रास्ते पर आना चाहता है उसको सिराते मुस्तकीम अल्लाह ताला दिखाते ज़रूर हैं। तो यहाँ मेंशन किया गया, मुतकब्बिर ना बनो, मुतकब्बिर इंसान का अंजाम जहन्नुम है। और अल्लाह तमाम मुतकब्बिर इंसानों को, चाहे वो कितने ही बड़े नंबर में क्यों ना हो, जहन्नुम में डाल देगा, और फिर वो अननोन होंगे, कोई उनको नहीं पहचानेगा। तो अपने अंदर से सबसे पहले इसी मुकाम पर अगर किसी भी किस्म का किबर है, अगर कभी अपने आप को कुछ समझा है, अगर किसी भी किस्म की एरोगेंस है, अल्लाह से दुआ मांगे, अल्लाह मुझे इबादुर रहमान में दाखिल फरमा। और इबादुर रहमान की सूरह फुरकान में पहली सिफत आती है, वो ये कि वो नरमी के साथ चलने वाले होते हैं, उनके अंदर किसी किस्म की अकड़ नहीं होती, वो अपने आप को कुछ समझते नहीं हैं। उनके लिए सबसे अहम अल्लाह की फरमा बरदारी होती है, वो अपने आप को ना कभी अपने कपड़ों से गेज करते हैं, ना सामने वाले को उसके कपड़ों से गेज करते हैं, ना वो सामने वाले को ये देख के सलाम करते हैं कि ये मेरे सलाम के काबिल है कि नहीं है। रमज़ान का महीना है, हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिदों में जाते हैं, किसको सलाम करते हैं हम? जिसको हम जानते हैं, बराबर में दो बैठे हैं आपके राइट और लेफ्ट पर, उनको नहीं सलाम किया, दूर नजर आ गई अपने मोहल्ले वाली या अपने क्लास की कोई फ्रेंड, वहां से वेव कर दिया उनको। और जो राइट और लेफ्ट बैठे हैं, आपका क्या ख्याल है वो मुसलमान नहीं है? मस्जिद में बैठे हैं आपके साथ, नमाज पढ़ने आई है, आपका क्या फर्ज बनता है? आप जाकर बैठ गए, अभी अजान, अभी इकामत नहीं कही गई है, कहिए अस्सलामु अलैकुम, हम कहते हैं लो जिसको सलाम करेंगे और जिसको जानेंगे उसी को सलाम करेंगे, वरना लोग पूछते हैं हेलो आप कौन, मे आई नो यू। जी आप बता दें, जब आपसे कोई पूछे मे आई नो यू, कहें जी मेरा नाम ये है, मैंने मुसलमान होते हुए आपको सलाम किया है। और सलाम करना इंसान के किबर को तोड़ता है। सलाम को आम कीजिए, आप अपनी रूटीन बनाएं। अगर आप बाकी दिनों में मस्जिद जाएंगी या अल्लाह ताला अगर आपको ईद के दिन मस्जिद लेकर जाएगा, जिसका आमना सामना, जिससे नजर टकरा जाए, सड़क पर नहीं बात करी मैं, मस्जिद में जिस खवातीन के पोर्शन में जिससे नजर टकरा जाए, सर हिलाइए, करीब हैं तो सलाम का जवाब दीजिए। एक अच्छी तरह से सर हिलाना भी एक आपका अच्छा जेस्चर होता है, मुस्कुरा दीजिए दूर से देखकर। कभी कभी मुस्कुराना भी अच्छा होता है। मस्जिद में बास खवातीन आती हैं, लगता है उनके उनके ऊपर लिखा हुआ मुस्कुराना मना है। क्यों, ये कौन सी इबादत हो, ये कौन सी स्पिरिचुअलिटी है? बास खवातीन चाहती हैं हमें कोई देखे भी नहीं मस्जिद में। भाई ठीक है, आप अपनी इबादत के लिए आए हैं, लेकिन थोड़ा, मस्जिद वो जगह है जहां आप कम्युनिटी में मूव कर रहे हैं। मस्जिद वो जगह है जहां पर आपको अपने मोहल्ले के वो लोग मिलते हैं जिनसे हमें जिंदगी में मिलने की तौफीक नहीं होती है, जो हमारे लाइफस्टाइल्स हैं। रिश्तेदारों से मिलते हैं हम तो साल साल पीछे, दो दो साल पीछे। आपका क्या ख्याल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक तुम्हारा नेबरहुड तुम्हारे राइट हैंड पे 40 घर और तुम्हारे लेफ्ट हैंड पर 40 घर, हम हर से जाके मिलते हैं ईद के ईद भी। तो मस्जिद वो जगह होती है, रमजान वो महीना होता है, इट्स अ ब्लेसिंग कि आप अगर मस्जिद जा रही हैं, आपको अपने मोहल्ले के चार चेहरे नजर आते हैं, लोग नजर आते हैं, सलाम दुआ कीजिए। बाज लोग इधर सलाम फेरते हैं ऐसे तीर की तरह बाहर निकलते हैं, जैसे पता नहीं कौन सी एलर्जी है उनको मस्जिद से। ये ना कीजिए, मिलें, इससे तकब्बुर टूटता है इंसान का। मस्जिद में आप जब खड़ी हैं, बाज़ों का खवातीन अपनी सफ इसलिए बदल लेती हैं, मेरे बराबर में जो खड़ी मैं इनके साथ खड़ी नहीं हो सकती, आई कांट स्टैंड विद हर। क्यों? इसलिए कि वो शायद स्टैंडर्ड में मेरे बराबर की नहीं लग रहे हैं। इंसान अपने दिल का हाल सबसे बेहतर जानता है, या अल्लाह जानता है मेरा दिल, या मैं खुद जानती हूँ अपने दिल को। जहन्नुम में जाने वालों का मेजर करेक्टरिस्टिक किबर होगा, तकब्बुर, बिल्कुल जैसे जन्नत में जाने वालों का मेजर करेक्टरिस्टिक खशियत होगा, खौफ होगा। जिस दिल में अल्लाह की खशियत होती है वो अल्लाह की मखलूक को मामूली नहीं समझता। जिस दिल में अल्लाह का खौफ होता है वो इंसान को डिग्रेडेड नहीं समझता। जिस दिल में अल्लाह का खौफ समा जाता है, अल्लाह की अजमत समा जाती है, वो इंसान किसी इंसान के गुनाह की वजह से भी उसको डिग्रेड नहीं करता। इसलिए कि इंसान मोमिन किसी भी इंसान के गुनाह से नफरत कर सकता है, उस इंसान से नफरत नहीं कर सकता। तो अगर हमने अपने आप को जहन्नुम से बचाना है, सबसे पहले इस किबर को अपने दिल से निकाल दें। बाज़ औक़ात हमें नहीं पता चलता, हमारे एटीट्यूड में एरोगेंस आ जाती है, तो उसमें बेहतर होता है आप अपने आसपास जो आपके करीबी लोग हैं, आपके अपने घर वाले, आपके बच्चे, आपके हस्बैंड, आपके अम्मी अब्बू और आपका नौकर जो सारा दिन आपके साथ रहता है, ये सब लोग जिनके मैंने आपके सामने नाम लिए हैं, आप टारगेट बना लें 6 महीने में वक्तन फवक्तन मैंने इनसे पूछते रहना है। सुनो, मैं एरोगेंट तो नहीं लगती, पूछने में बुराई है? कभी पूछे अपने बच्चों से, बच्चे और अम्मा ऐसा सवाल पूछे, अब अम्मा हाथ आई, खूब दिल भर के अम्मा को बुली करो। बच्चों जो हकीकत हो वही बताना। अगर आपको लगता है अम्मा में एरोगेंस है तो प्यार से कह देना, बहुत अदब के साथ, जी अम्मा कभी कभी लगता है। और अगर अम्मा में एरोगेंस नहीं है तो दिल खोल कर तारीफ करना कि नहीं अम्मा बिल्कुल भी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह आप तो इतनी सॉफ्ट स्पोकन है। हालांकि दिल कह रहा होगा जी नहीं, 24 घंटे मुझे डांटती रहती है। शौहर से पूछें क्या मैं आपको मुतकब्बिर लगती हूँ, कहेंगे बेगम तकवे का हैसा हो गया क्या, मुतकब्बिर लगती हूँ। लेकिन पूछा करें, कभी नौकर से पूछें, अब ये ड्राइवर से पूछने की जरूरत नहीं है, सही, या खानसामे से या चौकीदार से पूछने की जरूरत नहीं है, अपनी जो आपका फीमेल स्टाफ है, जो खातून है काम करने वाली, उनसे पूछें, देखो तुम्हें लगता तो नहीं कि मैं बता तकब्बुर वाली हो गई हूँ, ये पूछा करें। इसमें कोई किसी किस्म का जो है वो रिया नहीं आएगी, इसलिए कि ये वो लोग हैं जो हमेशा हमें सच्ची गवाही देंगे, और हमें ऐसे लोगों की सच्ची गवाही चाहिए होती है। मुतकब्बिर इंसान के दोस्त कम से कम होते हैं। मुतकब्बिर इंसान के लोग जी हुजूरी करने वाले बहुत हो सकते हैं, याद रखिएगा, मुतकब्बिर इंसान लोगों के दिलों पर राज नहीं कर सकता। मुतकब्बिर इंसान को लोग उसके पोजीशन और उसके फेम की वजह से उसकी बटरिंग जरूर कर सकते हैं ताकि उनको भी 4 फायदे मिल जाएं, लेकिन जो दिल पर राज करता है, जो दिलों को फतह करता है, वो इंसान होता है जो जेन्युइन होता है, जिसकी मुस्कुराहट भी जेन्युइन होती है, जिसका कलाम भी जेन्युइन होता है, जिसका देखना भी जेन्युइन होता है। क्या किसी को किसने कैसे देखा, इससे पता चल जाता है कि वो मुतकब्बिर है कि नहीं। मिसाल के तौर पर आप मुझे देखकर मुस्कुराएं और मेरे माथे पे 3 बल स्टेबल रहे अपनी जगह पर, इसका मतलब है खुदा ना खास्ता कि मेरे अंदर किबर है। वरना मुस्कुराहट कंटेजियस होती है, मैं मुस्कुराऊंगी आपको देखे आप सब मुस्कुराना शुरू कर देंगे, आप मुस्कुराएंगे मैं मुस्कुराना शुरू कर दूंगी। तो आज अपना टारगेट बनाएं, अभी भी रमजान के 4 दिन हैं, रमजान की बरकत से इंसान की नेकियां उसके अंदर परसिस्ट कर सकते हैं। अल्लाह से दुआ मांगेगा हाथ उठाकर, अल्लाह इबादुर रहमान की पहली क्वालिटी मेरे अंदर ले आए। कभी कभी इंसान बहुत लंबे लंबे टारगेट अपने आप को देता है और अमल में कुछ भी नहीं लेकर आता, सिर्फ एक अमल अल्लाह की खशियत और बंदों के साथ मेरे अंदर कभी किबर ना आए। इंशाल्लाह आपके अंदर इबादुर रहमान की क्वालिटी आना शुरू हो जाएगी, इंशाल्लाह आपके अंदर खशियत आना शुरू हो जाएगी। तो अल्लाह ताला ने वाजे किया कि मुतकब्बिर का पनाहगाह जो है वो जहन्नुम है। जब जहन्नुम मुतकब्बिर इंसान की पनाहगाह है तो जहन्नुम खुद बहुत मुतकब्बिर है, इसलिए गजब वाली और रेज वाली है। कुल्लमा उल्किया फीहा फौजुन सअलहुम खजानातुहा, जब कोई भी ग्रोह मैसिव ग्रोह उसमें डाला जाएगा ट्रैश की तरह, तो जो उनका गार्जियन होगा जो कीपर होगा वो सवाल करेगा। सा अलहुम खजानातुहा, ये जो खजानातु है ये खजाने से है, ये जमा है खजानातु खाजिन की। खाजिन कहते हैं खजाने की हिफाजत करने वाला, इस्मुल फाइल खाजिन, किसी वॉल्ट की हिफाजत करने वाला, प्रोटेक्शन करने वाला खाजिन। खजाना क्या होता है? ऑब्वियस होता है, छुपा हुआ होता है, छुपा हुआ होता है। तो अब जरा आप इसके अंदर गहराई देखें। एक वो जो दुनिया में बड़े मुतकब्बिर थे, दुनिया में अपने आप को बड़े इलीट लीडर और अपने आप को बड़ा फेम वाला समझते थे, मशहूर समझते थे, जब जहन्नुम में डाले जाएंगे अल्लाह की नाफरमानी की वजह से तो अननोन होंगे। अल्लाह ने उनको टाइटल ही फौजुन का अननोन दिया है। फिर जिस जहन्नुम में डाले जाएंगे, खजा नातुहा क्या बता रहा है? इट्स अ सीक्रेट चैम्बर, सीक्रेट प्रिजन, मजीद अननोन हो जाएंगे। कहाँ डाले जाएंगे पीछे कोई नहीं जानेगा, कैसी सजाओं में होंगे, खुद तकलीफ में होंगे, पीछे बचाने वाला कोई नहीं होगा जो इनकी आवाजों को सुनकर इनको बचा सके। तो अल्लाह ताला ने खजा नातुहा के अंदर स्कॉलर्स कहते हैं कि एक सीक्रेट प्रिजन का एक जो है वो एसेंस दिया है कि मजीद अल्लाह उनको दूर फेंक देगा। और ये वो लोग थे जिन्होंने दुनिया में अल्लाह के कलाम से अपने आप को दूर किया, ये वो लोग थे जिनको दीन पर बात करना या दीन की शरीयत पर अमल करना बीनीथ द डिग्निटी लगता था, ये वो लोग थे जिनके लिए दीन और शरीयत के अहकामात एक ट्रैप से एक फंदे से कम नहीं थे, ये वो लोग थे जिन्होंने दीन पर अमल करना जो था वो अपनी शान के खिलाफ समझा था। मैं ये काम नहीं कर सकती, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, मैं ये होलिया नहीं अडॉप्ट कर सकती हूँ, मैं जिस जगह पर हूँ वहाँ मेरे लिए मुमकिन नहीं है, मैं ये काम नहीं कर सकती, मैं इतनी इबादत नहीं कर सकती हूँ, मुझे ये करना ही पड़ता है। बास दफ़ा ख़वातीन, खासतौर पर वो ख़वातीन जो किसी जगह पर किसी मल्टीनेशनल में जॉब्स कर रही होती हैं या कॉरपोरेट इन्वायरमेंट में होती हैं, जब उनको बताया जाता है कि नामहरम के साथ आपने हाथ नहीं मिलाना, तो वो कहती हैं मेरी मजबूरी है, नौकरी मेरी इस वक्त जो है वो मजबूरी है, मुझे करना पड़ता है। अल्लाह को क़यामत के दिन क्या जवाब देंगे? राज़िक नौकरी थी या राज़िक अल्लाह था? आप अल्लाह की खातिर एक दरवाजा बंद करते हैं कि इस दरवाजे से गुजर के अल्लाह की नाफरमानी हो रही है, क्या हमारा ईमान नहीं है कि अल्लाह 10 दरवाजे खोल देता है? इमाम इब्नुल क़य्यिम अल जौज़ी अपनी किताबों में लिखते हैं कि जब भी अल्लाह अपने बंदे के लिए किसी एक दरवाजे को बंद करता है तो हमेशा अल्लाह 2 दरवाजे रहमत के खोल भी देता है। सिर्फ डिपेंड करता है कि सुनने वाले का, देखने वाले का, उसको बर्दाश्त करने वाले का ईमान कितना बड़ा है, वरना रहमत के हमेशा 2 दरवाजे अल्लाह साथ साथ खोलता है। तो अल्लाह ताला ने यहाँ उन लोगों को वाजे किया है, ये वो लोग थे जिनके लिए दीन पर अमल करना बीनीथ द डिग्निटी था। एम्बेरस्ड मुस्लिम, अपने आप को सो कॉल्ड लिबरल मुस्लिम कहने वाले, अपने आप को सो कॉल्ड मीडियम मुस्लिम कहने वाले, वो जिनको अपोलोजेटिक मुस्लिम बनना पसंद था, वो जिनके लिए इस्लाम सिर्फ रिलीजन के बॉक्स में एज अ इस्लाम काफी था, उनकी बात है। अल्लाह उनको ऐसा गुमनाम कर देगा कि अब वो कम्प्लीटली अननोन हो जाएंगे, अब कोई उनको नहीं जानेगा। तो जो जहन्नुम के गेट कीपर्स होंगे वो उनसे सवाल करेंगे, अलम यातिकुम नज़ीर, क्या तुम्हारे पास कोई वॉर्न करने वाला, खबरदार करने वाला नहीं आया था? इसको कहते हैं अरबी जुबान में सुआलु तौबीग, यानी ये सवाल किया गया है एक, जिसको आप कहते हैं एक क्योरी के तौर पर, प्रिजन ओरिएंटेशन में जो बहुत सख्ती से येल करके बोला जाता है, कोई प्यार से नहीं पूछा जा रहा, हम पढ़ते हैं तिलावत करते हुए बहुत ही रिदम के साथ पढ़ते हैं अलम यातिकुम नजीर, जहन्नम के फरिश्ते ऐसे नहीं पूछेंगे, दे विल लिटरली येल, शाउट करेंगे, गिलादुन शिदादुन सूरह तहरीम में आता है, बहुत सख्त हैं अपने लहजे में भी और अपने कामों में भी। अल्लाह ने उनको जो काम करने का कहा है वो बस वही काम करते हैं। आपको याद होगा जो फरिश्ता मालिक है, जो जहन्नम का गार्जियन है, वो मुस्कुराता नहीं है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा था कि तमाम फरिश्तों ने मेराज पर मुझे मुस्कुराकर सलाम किया सिवाय मालिक के, तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा था जब से जन्नत बनी है मालिक ने मुस्कुराना छोड़ दिया है, जहन्नम के फरिश्ते मुस्कुराते नहीं हैं। सो दे विल येल, चीख कर पूछेंगे, अलम यातिकुम नज़ीर, क्या तुम्हारे पास कोई वार्निंग देने वाला नहीं आया था। सूरह मुल्क की जो कंस्ट्रक्शन है, जो जुमलों की कंस्ट्रक्शन है, उसमें आपको हर लफ्ज के अंदर एक बहुत गहराई महसूस होती है। यकीनन जो लोग अरबी जुबान समझते हैं उनको इस गहराई को समझकर और मजा आता है। यहां आया है अलम यातिकुम नज़ीर। यातिकुम अरबी जुबान में कहते हैं, इसको मैं आसान जुबान में अगर आपको बताऊं, क्या तुम्हारे पास कोई एक भी ऐसा इंसान नहीं आया था जिसने तुम्हारे दिल को इस कलाम के जरिए टच किया होता। यातिकुम, कोई एक भी नहीं आया था जिसने तुम्हारे दिल को टच किया होता अल्लाह के कलाम के जरिए, जिसने तुम्हें कोई वार्निंग दी होती, जिसने तुम्हारे लिए कोई अच्छी नसीहत की होती, क्या कोई एक भी ऐसा नहीं आया था। नज़ीर का लफ्ज आया है, दो अल्फाज आते हैं अरबी जुबान में, एक आता है नज़ीर जो यहां आया है, एक आता है मुनज़िर, मीम नून दाल रा, दोनों में फर्क क्या है। आप उर्दू का तर्जुमा दोनों का देखते हैं, नज़ीर खबरदार करने वाला, मुनज़िर खबरदार करने वाला, लेकिन जब अरबी के दो अल्फाज हैं तो डेफिनेटली यहां पर दो अलग मफहूम है। मुनज़िर कौन होता है, जो आपको वार्न कर रहा है, जैसे इस वक्त अगर मैं आपको जहन्नुम की आयात के जरिए वार्निंग्स दे रही हूं तो मैं मुनज़िर हो गई, खबरदार करने वाली। लेकिन जिस वक्त अब मैं आपसे क्लास खत्म करने के बाद बातें कर रही हूं, अब भी मैं मुनज़िर हूं? नहीं, अब मैं मुनज़िर नहीं हूं। मुनज़िर जिस वक्त सो रहा है, अब मैं सोती हूँ, उस वक्त भी नज़ीर की कैटेगरी में होती हूँ, मैं उस वक्त भी वार्निंग दे रही हूँ। आपके आपके चेहरे को देख के ही डर लग रहा है। मुनज़िर जिस टाइम पे वार्निंग देगा सिर्फ उस टाइम पर वो वार्नर होगा, एज कम्पेयर टू नज़ीर, ये जो भी हमने बात की वो नज़ीर वाली सिचुएशन में होता है। नज़ीर ऐसा खबरदार करने वाला जो बोले तो वार्न करे, जो खामोश हो तो उसकी प्रेजेंस, उसकी पर्सनैलिटी आपके लिए वार्निंग बन जाए। ऐसे इंसान जिनकी प्रेजेंस में आपको अल्लाह याद आने लग जाए वो नज़ीर होते हैं। ऐसे इंसान जिनको देखकर आप अपना दुपट्टा ठीक करने लग जाएं, बाज़ ऐसे बुजुर्ग होते हैं ना, ख़वातीन उनके आने से फौरन सर पे दुपट्टा रख लेती हैं, पता नहीं बाज़ लोगों की वजह से सर पे दुपट्टा रखते हैं, क्यों रखती हैं पता नहीं। तो बाज़ लोगों की पर्सनैलिटी नज़ीर की होती है, वो जरूरी नहीं है हर दफ़ा आपको स्पीच देंगे, उनकी प्रेजेंस काफ़ी होती है इंसानों को नेकी की तरफ लाने के लिए। तो यहां पर एक लफ्ज़ आया है, मुनज़िर नहीं आया, नज़ीर आया है, यानी ये वो लोग होते हैं जिनकी माशरे में प्रेजेंस काफी होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत नज़ीर की शख्सियत थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का होना लोगों को नेकियों के लिए मोटिवेट करता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रेजेंस लोगों को गुनाहों से दूर करने में हेल्प आउट करती थी। ये डिफ्रेंसिएशन है बिटवीन मुनज़िर और नज़ीर। और अल्लाह ताला ने यहां पर यही बात कही है, क्या तुम्हारे आसपास कोई एक ऐसा इंसान नहीं था जिसने अल्लाह के कलाम के जरिए कभी तुम्हारे दिल को इम्पैक्ट किया हो? कोई ऐसा इंसान नहीं था जिसकी वार्निंग से या जिसकी पर्सनैलिटी से कभी तुम्हें भी नेकी करने का ख्याल आया हो? कोई ऐसा इंसान नहीं था जिसके आसपास होने से तुम्हें महसूस हुआ हो कि हाँ वाकई मैं एक अच्छी इंसान नहीं हूं? तो माशरे में हमेशा इस कैटेगरी के लोग होने चाहिए, नज़ीर की कैटेगरी के, ताकि उनकी वजह से, जरूरी नहीं होता ये जो नज़ीर की कैटेगरी के लोग होते हैं ये सिर्फ स्पीचेस देते रहें, ये स्पीकर्स हों। बाज़ औक़ात बाज़ लोग नज़ीर होते हैं बगैर किसी स्पीच और बगैर किसी स्पीकर बनने के, उनकी इखलाक, उनके किरदार, उनका मामला निभाना, उनकी प्रेजेंस खानदान वालों के लिए और आसपास के लोगों के लिए नज़ीर उनको बना देती है। लोग उनसे अच्छी बातें कॉन्स्टेंटली सीखते हैं, लोग उनके इखलाक से कॉन्स्टेंटली अल्लाह और इस्लाम के करीब होते हैं, लोग उनके मामलात निभाने से कॉन्स्टेंटली अपने दीन के अंदर मजीद जम जाते हैं। तो यहां मेंशन किया गया कि तुम्हारे आसपास क्या कोई ऐसा शख्स नहीं था जो नज़ीर होता, जो नज़ीर की कैटेगरी में होता। एक चीज और याद रखिएगा, नज़ीर सिर्फ रसूल नहीं होते, नज़ीर हर वो शख्स है जो आपको अच्छी नसीहत करेगा, नज़ीर हर वो शख्स है जो आपको दीन के लिए एनकरेज करेगा, नज़ीर हर वो शख्स है जो आपको इखलाक सिखाएगा। इसलिए मैंने कहा ज़रूरी नहीं है कि जो उस्ताद बनकर बैठा है सिर्फ वो नज़ीर है, आपके माँ बाप आपके लिए नज़ीर होते हैं। क़यामत के दिन जहाँ अल्लाह ताला जहन्नमियों से ये सवाल फरिश्तों के ज़रिए कराएंगे, अलम यातिकुम नज़ीर, क्या तुम्हारे पास कोई वार्न करने वाला नहीं आया था? औलाद होते हुए हम सोच लें, क्या तुम्हारे पास कोई अम्मी नहीं आई थी तुमको गाइड करती रहती बेटा ये काम गलत है? और ना प्रैक्टिकल नोट, कुरान की आयात को जब आप प्रैक्टिकल नोट पर लेकर आते हैं तो आपको चीज़ें फ़ौरन क्लिक करती हैं, आपको फ़ौरन समझ आता है हाँ दिस इज़ फॉर मी, वरना आप इसको एलियनेटेड होकर पढ़ते रहते हैं। आप कहते हैं हाँ किसी की बात है, हाँ जिसको जहन्नुम में डाला जाएगा, हाँ जिसके पास अल्लाह के रसूल आए थे, हाँ जिसने सहाबा की ज़ुबान से कुरान सुना था। नो दिस इज़ फॉर मी टू। जब जहन्नुम का फरिश्ता ये पूछेगा अलम यातिकुम नज़ीर, क्या तुम्हारे पास कोई रसूल नहीं आए थे, क्या तुम्हारे पास कोई रसूल के कंपेनियन नहीं आए थे, वहां पर ये 2019 में आने वाले तमाम इंसानों से जिन्होंने अल्लाह को पहचानने के बावजूद अपने अमल को दुरुस्त नहीं किया और खुदा ना खास्ता वो जहन्नुम के मुंह पर पहुंच गए जिसकी आवाज शहीकुन की कैटेगरी में आ रही होगी, उस वक्त उनसे पूछा जाएगा अलम यातिकुम नज़ीर, क्या माँ भी नहीं थी घर में जो तुम्हें तमीज सिखाती, क्या बाप भी नहीं था जो तुम्हें नसीहत करता, क्या उस्ताद भी नहीं था, क्या कोई व्हाट्सएप ऑडियो नहीं थी दिस इज फॉर अस स्पेशली, क्या कोई यूट्यूब चैनल नहीं था, क्या कोई वेबसाइट नहीं थी, क्या कोई किताब नहीं थी, क्या कोई ऐसी दोस्त नहीं थी जो तुम्हें एक अच्छा किसी किस्म का मशवरा या एडवाइस देती। इस नज़ीर की कैटेगरी में हर उस इंसान को रख लें जो आपको दीन की तरफ खींचना चाहता है, हर वो इंसान नज़ीर है। तो आज से अम्मा, जितनी अम्माएं बैठी हैं, आप अपने बच्चों के लिए क्या हैं? नज़ीर। और बच्चों, अम्मा आपके लिए नज़ीर हैं। तो जब अम्मा कोई नसीहत करें तो अम्मा को कुछ जवाब देने से पहले ये जुमला सोच लेना सूरह मुल्क का, कि फरिश्ते पूछेंगे जहन्नम के पास पहुंच जाने वालों से अलम यातिकुम नज़ीर, अल्लाह की रहमत कि अल्लाह ने सरों पर माँ बाप रखे, अल्लाह की रहमत अल्लाह ने यतीम नहीं रखा हुआ, अल्लाह की रहमत अल्लाह ने नसीहत करने वाले नेक वालिदैन दिए हैं, उनकी कदर करें, माँ बाप की शक्ल में जन्नत के दरवाजे खुले हैं जिंदगी में, जब तक माँ बाप हयात हैं खिदमत करें, नसीहतें माने और जन्नत कमाएं और अल्लाह के करीब हो जाएं। आगे फरमाया आयत नंबर 9 में इसी कॉन्वर्सेशन को मजीद बढ़ाया जा रहा है, अब अहले जहन्नुम जो जहन्नुम के मुंह पर खड़े हैं फरिश्तों के जवाब के बाद कहेंगे कालू बला कद जा अना नज़ीर, हाँ हाँ क्यों नहीं, आया था हमारे पास खबरदार करने वाला, फकद्दबना हम ही ने झुटला दिया उसको, वकुलना और हमने कहा मा नज़ल्लाहु मिन शय, अल्लाह ने कोई चीज़ नहीं नाजिल की, इन अंतुम इल्ला फी दलालिन कबीर, यकीनन तुम सब मैसिव कन्फ्यूजन का शिकार हो। तो ये जहन्नमियों की कॉन्वर्सेशन आ रही है जो वो फरिश्तों के साथ करेंगे। अभी आपको बताया फरिश्तों ने कोई बहुत ही प्यार और मोहब्बत से नहीं पूछा अलम यातिकुम नज़ीर, फरिश्तों की आवाज़ में क्या तेज़ी होगी, क्या लाइटनिंग इफेक्ट होगा, क्या थंडर इफेक्ट होगा, हम नहीं जानते। सिर्फ वो दो फरिश्ते जो हर इंसान को बहरहाल फेस करने हैं कि जब कब्र में दफना के जाया जाता है तो हर मोमिन हर काफिर हर मुनाफिक के लिए वो दो फरिश्ते एक ही फॉर्मेट पर आते हैं, जिनके लिए आता है कि वो दो फरिश्ते आते हैं हदीस में जिसका मफहूम आता है सियाह चेहरों वाले जिनकी आंखें नीली हैं और जिनकी आंखों के अंदर बिजली की कड़क और जिनकी आवाज के अंदर बादलों की गरज है, और जब उठाकर मुर्दे को बिठाते हैं और तीन सवाल करते हैं कि तुम्हारा दीन कौन क्या है, तुम्हारा रब कौन है और तुम्हारे पास अल्लाह का पैगाम कौन लेकर आया। जब हर इंसान को मिलने वाले सवाल पूछने वाले कब्र में आने वाले दो फरिश्ते, उनकी कैफियत ये है जिनको बाज़ लोगों ने बाज़ अहादीस से मुनकर और नकीर कहा है। ऑथेंटिक अहादीस में ज़्यादातर आपको मुनकर और नकीर का नाम कम मिलता है, नहीं मिलता है, सिर्फ आता है दो फरिश्ते जो इंसान को उठाकर बिठा देंगे। जब इन फरिश्तों की सख्ती का ये आलम है तो जो जहन्नुम के फरिश्ते होंगे, सूरह तहरीम की आयत नंबर 6 में आता है अलैहा मलाइकतुन गिलाज़ुन शिदादुन, बहुत सख्त जान फरिश्ते इसके ऊपर एज अ कीपर लगाए गए हैं, ला यासून अल्लाह मा अमरहुम, वो अल्लाह की नाफरमानी बिल्कुल नहीं करते, वा यफअलूना मा युमरून, और वो वही करते हैं जिसका उनको हुक्म दिया जाता है। तो आप जहन्नुम के फरिश्तों के सामने जितना भी मासूम चेहरा बना लें, जितना भी गिड़गिड़ा लें, جتنے بھی آنسو بہا لیں, لا یعصون اللہ ما امرہم, وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. اور یہ جہنمی وہ ہوں گے جس سے یہ کانورسیشن ہو رہی ہے, جن کے فیصلے ڈیسائیڈ ہو چکے ہیں. اب جہنم ان پر لکھ دی گئی ہے, حساب کتاب ہو چکا, یہ جہنم کے منہ پر کھڑے ہیں, انٹرنس پہ کھڑے ہیں اندر جانے کے لیے. اپنی اپنی باری میں اندر ٹریش کی طرح پھینک دیے جائیں گے, یہ ان کی بات ہو رہی ہے. اور جب یہ سخت فرشتے اپنی ٹون میں ان سے سوال کریں گے, تو جب جواب دینے والے انسان کرمنل جواب دیں گے تو کیا ٹون ہوگی, ہم اندازہ کر سکتے ہیں. جب کہیں گے قالوا بلا قد جاءنا نذیر, ہاں ہاں بالکل ہمارے پاس آیا تھا خبردار کرنے والا, فکذبنا, ہم ہی نے جھٹلا دیا. دس از اے نیچرل ہیومن انسٹنکٹ. اگر انسان کے اندر تھوڑا سا بھی اپنا ایمان جاگ جائے, اگر انسان کے اندر تھوڑا سا بھی پازیٹیو خوف پیدا ہو جائے, تو انسان اپنی غلطی کو ایڈمٹ کرتا ہے. اپنی غلطی کو ایڈمٹ نہ کرنے والا متکبر ہوتا ہے, اپنی غلطی کو نہ ایڈمٹ کرنے والا اپنی فطرت کو چھپانے والا ہوتا ہے, اپنی غلطی کو نہ ایڈمٹ کرنے والا اپنے نفس کی ورشپ کرنے والا ہوتا ہے. ہر انسان اپنے دل میں جانتا ہے اس نے کب گناہ کیا, اس نے کہاں غلطی کی, اور کہاں وہ غلطی کر رہا ہے. دنیا میں ان کو عقل نہیں آئی تھی, جہنم دیکھ کر سب عقل کام کرنا شروع کر دے گی. دنیا میں انہوں نے فطرت کو دبایا تھا, آخرت میں وہ فطرت خود زبان سے سچ نکلوائے گی, خود کہیں گے فکذبنا, خود کہیں گے کیوں نہیں, بلا قد جاءنا نذیر, ہاں ہاں بالکل ہمارے پاس آیا تھا. لیکن اب اس موقع پر ایڈمٹ کرنا, اس موقع پر اعتراف کرنا, اس موقع پر سوری بولنا فائدہ دے گا؟ اب فائدہ نہیں دے گا. سوری کہنے کے لیے ابھی بھی 5 دن باقی ہیں, یہ آخری دن رمضان کے, جاتے جاتے رمضان, پورا سال سوری بولیں, جب دل چاہے سوری بولیں, جس وقت گناہ ہو سوری بولیں. لیکن بہرحال اللہ کے سامنے اپنے اعمال, اپنی توبہ, اپنی ٹوٹی پھوٹی عبادات اور اپنی دعائیں پیش کرنے کے لیے یہ بہترین 5 دن ہیں. ڈونٹ ویسٹ دیم. بعض بچوں کی چھٹیاں ہو گئی ہیں, بعض بچوں کے پیپرز ختم ہو گئے ہیں, بعض بچوں کے پیپرز میں گیپس ہیں, بعض بچوں نے اپنے اوپر بڑا اپنے آپ کو جو ہے وہ افلاطون سمجھا, ہم نے پیپر بھی دیے اور ہم نے روزے بھی رکھے, اب ہمارے پاس 15 دن کا گیپ ہے, امی میں یہ سیزن دیکھوں گی, سیزن 2 پورا کمپلیٹ کروں گی. یہ نہیں کرنا. یہ 5 دن عبادت کے دن ہیں, یہ 5 دن معافی مانگنے کے دن ہیں. قیامت کے دن جہنم دیکھ کر اعتراف کرنا اور اس وقت ایڈمٹ کرنا کہ ہاں ہم سے غلطیاں ہو رہی ہیں, وہ فائدہ نہیں دے گا. آج ایڈمٹ کریں, آج اس بات کو مانیں, اور اللہ کے سامنے ایسی خشیت اللہ سے مانگیں کہ آئندہ ہمارے قدم کبھی گناہ کی طرف نہ اٹھیں. تو یہ کہیں گے اس وقت پور آؤٹ کریں گے, اس وقت چیخ چیخ کر بولیں گے, اس وقت جو ہے وہ پلیڈ کریں گے, قد جاءنا نذیر, ہاں بالکل ہمارے پاس نذیر آیا تھا. آپ قرآن کے الفاظ کی خوبصورتی دیکھیں. ابن عاشور اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں سوال کیا گیا تھا فرشتوں سے, الم یاتکم نذیر, کیا تمہارے پاس کوئی نذیر نہیں آیا تھا, کوئی ایسا بندہ آیا ہوتا جس کی صرف پریزنس نے تمہارے دل کو ٹچ کیا ہوتا, کوئی ایسا بندہ آیا ہوتا جس نے صرف ایک دفعہ تمہیں ایسی نصیحت کی ہوتی. یاتکم کے اندر یہ ایسنس ہے, ایک دفعہ ایسی نصیحت کی ہوتی جو دل پر لگی ہوتی. دس از دا ایسنس ان یاتکم. الم یاتکم نذیر کا جواب ابن عاشور کہتے ہیں ہونا چاہیے تھا, یہ لوگ جواب دیتے قد آتانا نذیر, ہاں ہاں آیا تھا ہمارے پاس نذیر. آتانا نہیں آیا, کیا آیا آیت میں, قد جاءنا نذیر. Now there is a difference between آتانا and جانا, دونوں میں آنے کا مفہوم آ رہا ہے, لیکن عربی زبان میں کوئی بھی دو الفاظ ایک دوسرے کا پرفیکٹ سبسٹیٹیوٹ نہیں ہوتے. دیر از اے ڈفرنس. اللہ تعالیٰ نے دو الفاظ استعمال کیے ہیں تو دو الگ الگ مفہوم ہیں. اگر یہاں پر آتانا آتا تو ہوتا ہاں ایک مرتبہ کوئی آیا تھا بتانے والا, مگر یہ کہہ رہے ہیں جا آنا. جا آ عربی زبان میں کہتے ہیں کلمتو تدلو علی المبالغہ والمشقہ, یعنی جو نذیر تھا اس نے تو اپنا حق ادا کیا تھا, ایک دفعہ تھوڑی بتایا تھا, کانسٹنٹلی بتاتے تھے, بار بار وارن کرتے تھے, پیار سے سمجھاتے تھے, حکمت سے سمجھاتے تھے, خلوص سے سمجھاتے تھے. اب نذیر کی جگہ پر ذرا اما کو رکھیں, بیٹھی ہیں بچیاں میرے سامنے تھے, مجھے مجبوری میں بول دیتی ہوں, الحمدللہ بہت سی بچیاں واٹس ایپ پر سنتی بھی ہیں اس لیے میں بول دیتی ہوں, کیونکہ یہ فیکٹ ہے نا. جب آپ اس طرح سے سورہ ملک کو سمجھتے اور پڑھتے ہیں तो फिर आपको ये अपनी जिंदगी का हिस्सा लगती है। जब आप इसको एलियनेटेड होकर सुनते और समझते हैं, तब आपको लगता है हाँ एक कुरान की सूरत थी जिसको हमने समझा, और सिर्फ आपके लिए एक और मेरे लिए एक इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन का बायस बन जाती है। इट्स नॉट जस्ट इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन, येट इट हैज़ द पावर ऑफ इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन, लेकिन ये मुझे और आपको इमोशनली कुरान के साथ अटैच करती है, ये मुझे और आपको इमोशनल स्ट्रेंथ देती है। कह रहे हैं जा अना नदीर, ये वो लोग हैं जिनको दुनिया में दीन वाले मौलवी बिल्कुल अच्छे नहीं लगते थे, बुरखे वाली आंटियां जहर लगती थी, जिनके लिए किसी को मौलवी कहना कॉम्प्लीमेंट नहीं होता था, क्रिटिसाइज करना गाली होता था, जिनके लिए किसी दाढ़ी वाले शख्स को देखकर बस लोग बिला वजह एग्जैजरेट करते हैं, फलां को देखा था उनकी दाढ़ी इतनी लंबी थी, भैया किसी की दाढ़ी उसके कहां तक आ सकती है, चेस्ट से नीचे तो नहीं जाएगी ना, बाज लोग एग्जैजरेट करते हैं और मजाक उड़ाते हैं, ये क्या चीज है। बस खुद माएं अपने बेटों को कहती हैं ये कैसी दाढ़ी रख ली है, बकरा लग रहे हो। आंटी बनी इमेजिन, और बेटे ने सुन्नत के अंदर सुन्नत को फॉलो करते हुए दाढ़ी रखी है। माएं होती हैं, नानियां होती हैं, दादियां होती हैं जो जवान बच्चियों के सरों से हिजाब खींच देती हैं, तुम्हारे रिश्ते नहीं आएंगे। ये क्या बूढ़ी रूह बनकर बैठी हुई हो, क्या बन गई हो ये तुम? ये मिजाज घर के बड़ों के अगर बन जाए तो फिर अगली नस्ल सिरात पर पार लगेगी या सिरात से नीचे आग में गिरेगी और गिराएगी सबको। हम सबको अपनी आंखें खोलने की जरूरत है। अल्लाह ताला हमें इमोशनली इस कुरान से अटैच कर रहा है। ये वो लोग थे जो इस वक्त एडमिट कर रहे हैं, जो इस वक्त एतराज कर रहे हैं, एतराफ कर रहे हैं, जिनको दुनिया में मौलवी पसंद नहीं थे, जिनको मौलवी किसी को कहना आउट ऑफ कॉम्प्लीमेंट नहीं होता था, आउट ऑफ गुस्सा, रेज, गजब, आउट ऑफ गाली होता था, अपने दिल की भड़ास निकाल कर कहते थे। किसी खातून को हिजाब में देखकर, निकाब में देखकर उसको निंजा कहना, इसलिए कहा कि बहुत क्यूट लग रही है आपको, निंजा क्यों कहते हैं? बाज़ों हस्बैंड जो है उनको पता नहीं कौन सा फोबिया होता है, अगर तुम कोर्स करने गई तो तुम निंजा तो नहीं बनोगी, प्रॉमिस करो। ये वो लोग हैं जिनको दीन से एलर्जी थी दुनिया के अंदर, ये वो लोग हैं जिनको हर वक्त नसीहतें करने वाले लोग पसंद नहीं थे। मैंने कल एक बात कही थी, दिल नहीं चाहता है कि आप उसको कुफर से जोड़ें, लेकिन बहरहाल इतनी सख्ती दिलों को सख्त कर देती है। जब माएँ बार बार बच्चों को नसीहत करती हैं तो बच्चे माओ को शटअप करा देते हैं, ये कह के अम्मा आपका फिर लेक्चर शुरू हो गया, यहां तो लेक्चर लगता है, और अम्मा को चुप कराने के लिए चार जुमले फौरन बोल देते हैं। लेकिन ये सूरत क्या बता रही है, अब जहन्नुम के मुंह पर खड़े होकर खुद कहेंगे जा अना नदीर, वो जो हमें दुनिया में अच्छे नहीं लगते थे अब खुद उनकी तारीफें कर रहे हैं, जिनके लिए दीन की बात वेस्ट ऑफ टाइम था, जिनका मिजाज ये था कि अच्छा इंसान बनने के लिए दीन एक एक्स्ट्रा चीज है, हम अच्छा इंसान बन गए हमें इसके लिए दीन की जरूरत नहीं है, हमारा स्पिरिचुअलिटी का एक अपना एंगल है, आप हमें स्पिरिचुअलिटी का कोई तरीका मत बताएं। ये वो कौम, वो यूथ जिनके लिए कहा जाए बेटा दुआ मांग लो, हम आपको बताकर दुआ क्यों मांगे, ये भी कोई बात है? अम्मा कह रही है बेटा दुआ मांग लो, मैं आपको क्यों दिखाऊं मैं दुआ मांग रही हूं? ये मिजाज, ये सख्ती के मिजाज हैं, ये मिजाज ये दिलों के ऊपर क्रस्ट बना देते हैं, ये मिजाज इससे दिलों के अंदर कसवत आ जाती है, दिलों के आसपास जो है वो एक हार्ड शेल आ जाता है, और जो अंदर फितरत वाला नरम दिल है वो कहीं छुप जाता है। ये सब वो माइंडसेट है जो इस दुनिया का है। क़यामत के दिन एतराफ करेगा कि नहीं नहीं हमारे पास आए थे और बड़ी एफर्ट से पैगाम पहुंचाया था, जा अना में एसेंस है ऐसा नज़ीर, ऐसा ही वार्निंग देने वाला जो पीछे पड़ जाए आपके, जो मेहनत करे आपको अच्छी बात बताने के लिए, जो जान लगा दे आपको अच्छी बात समझाने के लिए, जो मेहनत कर करके आपको बार बार नसीहत करे, मोहब्बत से नसीहत करे, एक एंगल से समझना आए दूसरे एंगल से समझाए, एक बात समझना आए दूसरी बात की मोटिवेशन दिलाए। अब एडमिट करेंगे कि नहीं नहीं हमारे पास नज़ीर आया था और बड़ी मेहनत से उसने हमें बात बताई थी, ये तो हमारी गलती है, मसला हमारा था, फकज़्ज़बना हमी ने रिजेक्ट कर दिया। फकज़्ज़बना के बाद आगे देखें आयत में आ रहा है जुमला व कुलना। फकज़्ज़बना का मतलब होता है तो झुटलाया हमने, किसको झुटलाया? ये आया जब ये नहीं आया कि किसको झुटलाया, तो अरबी जुबान का मिजाज क्या है कि जब मफूल भी ही नहीं आएगा, ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, तो वहां पर तवस्सो होगी, वहां मानी ब्रॉड होंगे, यानी हर चीज को झुटलाया, اللہ کے پیغام کو جھٹلایا، قرآن کو جھٹلایا، جنت اور جہنم کے ذکر کو بلٹل کیا، رسول کی تعلیمات کو معمولی سمجھا، نصیحت کو اپنے لیے بیکار سمجھا، اور زندگی میں دین کی اہمیت کو اپنے لیے بالکل کسی قسم کا کوئی ہائی پیڈسٹل نہ دیا۔ فَكَذَّبْنَا کے بعد یوں سمجھیں، اگر آبجیکٹ نہیں ہے تو فل ان دی بلینکس ہیں۔ سب کچھ کیا، آپ جو کچھ اس کے اندر فٹ کر سکتی ہیں وہ فٹ کر لیں، یعنی یہ اپنے گناہوں کی لسٹ اتنی لمبی خود بتا دیں گے کہ نذیر جب بھی آتا تھا وہ ان کے لیے ایک موقع ہوتا تھا کہ ذرا اپنی زندگی میں دوبارہ سے سوچیں، ری تھنک کریں، لیکن انہوں نے سوچنا دنیا میں پسند نہیں کیا۔ ہم اپنی مرضی کی اسپریچویلٹی کو مینٹین کریں گے، اپنی مرضی کی زندگی گزاریں گے، تو اس کا نقصان کیا ہوا؟ اس کا نقصان یہ ہوا کہ اب جہنم کے منہ پر آ کر کھڑے ہوئے ہیں، تو آخرت میں ان کو اپنا مقام نظر آ جائے گا۔ دنیا کے متکبر انسان اپنے کبر کے شیڈ کے اندر ہمیشہ دین سے دور جاتے ہیں۔ اگر آج ہمارا دل نہیں چاہتا مسلمان عورت بننے کا، اگر آج ہمارا دل نہیں چاہتا نمازیں پڑھنے کا، اگر ہمارا آج دل نہیں چاہتا اللہ کی بات سننے کا، اس کا مطلب ہے ہمارے اندر کبر ہے، اور کبر کو ہٹانے کا آسان طریقہ یہی ہے کہ ہم اللہ کے کلام سے اپنے آپ کو اٹیچ کریں۔ کبر انسان کو آہستہ آہستہ اللہ سے دور کر دیتا ہے، اور تکبر کو پہچاننا بہت مشکل ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ تکبر جس کے دل میں ایٹمز ویٹ کے برابر بھی ہوگا وہ جنت میں نہیں جا سکے گا، ایٹمز ویٹ کے برابر۔ اور کس نے اپنی آنکھ سے ایک ایٹم دیکھا ہے؟ کس نے اپنی آنکھ سے ایک ایٹم دیکھا ہے؟ تو اپنے آپ کو کانسٹنٹلی تکبر سے بچانے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ شان نزول میں دیکھیں تو یہاں پر قریش موجود تھے جو اپنے آپ کو ایلیٹ سمجھتے تھے، پبلک فگر تھے نا قریش کے، جتنے سردار تھے یہ بڑے پرومیننٹ تھے، حرم کے اندر، کعبہ کے پاس آس پاس رہنے والے، مکہ میں رہنے والے، ان کی عزت تھی اس لیے کہ یہ کعبہ کے کسٹوڈین تھے۔ تو جب عزت ہوتی ہے، جب فیم ہوتا ہے، جب اللہ کوئی بڑی جاب، جب کوئی اللہ بڑا کاروبار دے دیتا ہے، جب اللہ زندگی کے اندر ایک مقام اور ایک سٹیٹس دے دیتا ہے، تب اللہ کا بندہ بن کر دکھانا یقیناً مشکل ہوتا ہے۔ لیکن جو بن جاتا ہے اس کو پھر اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کا فیم عطا کرتا ہے۔ مشکل ہوتا ہے، نعمتوں میں انسان زیادہ تر ہمیشہ نافرمانی میں گئے، نعمتوں میں انسانوں نے گناہوں کو ایڈاپٹ کیا، نعمت خالق سے دور کرتی ہے۔ ایک مٹھی بھر لوگ رہے ہمیشہ سے جو نعمتوں کے راستے سے اللہ کی طرف آئے، جنہوں نے اپنی نعمتوں کو اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا، ورنہ ہمیشہ سے نعمتیں انسانوں کو بگاڑتی رہیں۔ جب ہر خواہش پوری ہوتی ہے تو نفس موٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے، جب ہر خواہش پلیٹ میں رکھ کے مل جاتی ہے تو پھر نفس کی قربانی دینے کا دل نہیں کرتا ہے۔ تو اگر اللہ نے ہمیں نعمتوں میں رکھا ہے، ہمارے پاس جنت کمانے کے بہت زیادہ چانسز ہیں۔ فرصت دیا اللہ نے ہمیں، وقت دیا اللہ نے ہمیں، صحت دیا اللہ نے ہمیں، بہت سے زندگی کے وہ کام ہم نہیں کرتے جو میجورٹی لوگ کرتے ہیں۔ تو یہ جو اللہ نے ہمیں فرصت دی ہے یہ کس لیے دی ہے؟ شاپنگ مالز میں یہاں سے وہاں جو ہے وہ مارے مارے پھرنے کے لیے، ہر وقت جو ہے وہ فرینڈس کے ساتھ ہینگ آؤٹ کرنے کے لیے، کبھی اس کے گھر تو کبھی اس کے گھر، کبھی اس بازار میں تو کبھی اس بازار میں، کبھی اس شاپنگ مال میں تو کبھی اس ریسٹورنٹ میں، بس اس لیے؟ کبھی کسی ایک یوٹیوب چینل کے اوپر ایک سیزن دیکھتے ہوئے، کبھی نیٹ فلکس پر، ابھی ایک نیا طریقہ شروع ہو گیا، میں نے نیٹ فلکس کی ممبر شپ خریدنی ہے تم میرے ساتھ شیئر کر لو، مطلب تم بھی گناہ میں میرے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ اس از اسپریڈنگ لائک اے فائر۔ سب ینگ بچوں کو پتا ہے امائی شکل دیکھ رہی ہیں، ہاں نہیں کریں، اس لیے کہ آپ اپنا بھی گناہ کریں گے اور جس کو ساتھ میں شامل کیا اس کا گناہ بھی آپ کے اکاؤنٹ میں آ جائے گا۔ تو ایک گناہ نہیں ہوگا، ایوری گناہ ول بی ڈبل۔ اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ ہمیں اس نعمت کے اندر اپنا فرما بردار بنائے، نعمتوں کے اندر اللہ کا فرما بردار بنائے۔ جب درد ہو، جب چوٹ لگے، جب غم آئے، تب تو پلٹتا ہے انسان۔ اور قرآن نے کتنی مرتبہ یہ مزاج بنایا بتایا ہے کہ بڑے سے بڑا نافرمان جو اللہ سے دور بھاگتا ہے، اللہ ایک جھٹکا لگاتا ہے دنیا کی زندگی میں، وہ بھی اللہ کو پکار اٹھتا ہے، پھر جب اللہ اس کی پکار پر، کتنا رحمان ہے، زندگی بھر جس نے نافرمانی کی، ایک مشکل آئی اور اس نے اللہ کو پکارا اور اللہ نے اس کو اس مشکل سے نکال دیا، رحمان ہے نا، موقع تلاش کرتا ہے بندوں کو معاف کرنے کے۔ اس نے اس مشکل سے اس کو نکال دیا اور جیسے ہی مشکل سے نکالا یہ انسان پھر اللہ سے غافل ہو گیا. تو اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نعمتوں کی قدر کرنے والا بنائے. ہر نعمت کا مطلب ہے ذمہ داری. اس لیے نعمت نہیں ملی ہمیں کہ ہم ہیں ہی اتنے اچھے. کیا ہمارے پاس چوائس تھی کہ ہم ایسے گھروں میں اور ایسے سرکمسٹانسز میں رہتے ہیں, اور وہ جو اس وقت باہر سڑک پر کھڑے ہو کر 34 ڈگری 33 ڈگری کے اندر بھیک مانگتے ہیں, وہ جن کے سر پر چھت نہیں ہے, وہ جو فٹ پاتھ پر سوتے ہیں. کبھی سوچا ہے, کبھی ہم نے امیجن, کہ ہم امیجن نہیں کر سکتے کہ ہمیں ایک رات فٹ پاتھ پر گزارنی پڑے. لوگ اپنی زندگیاں اس میں گزار رہے ہیں, بچے جوان ہو رہے ہیں سڑکوں کے اوپر. ہمارے پاس کیا کریڈٹ ہے ایسا کہ ہم ایسے گھروں میں اور وہ سڑکوں پر؟ کیا ہمیں ایسے پر لگے ہوئے ہیں؟ کون سے ہم آسمان سے اترے ہیں؟ جیسے وہ اشرف المخلوق ویسے ہی ہم مخلوق, جیسے ان کے دو ہاتھ پاؤں ویسے ہمارے دو ہاتھ پاؤں, جیسے وہ اللہ کے بندے ویسے ہم اللہ کے بندے. تو پھر اللہ نے ہمیں اتنی نعمتوں میں کیوں رکھا ہے؟ اس لیے کہ ہم ہیں ہی اتنے اچھے, اس لیے کہ اللہ نے ہم سے کوئی کام لینا ہے. ان کا امتحان غربت کا امتحان, ان کا بھی امتحان ہے اور ہمارا بھی امتحان ہے. ہمارا امتحان مال کا امتحان. کون سا امتحان زیادہ سخت ہے؟ ہم کہتے ہیں غربت کا امتحان. نہیں, غربت تو خالق سے جوڑ دیتی ہے, غربت تو دل کو نرم کر دیتی ہے. وہ سڑک پر پھرنے والی عورت, وہ سڑک پر پھرنے والے بچے, ان کے چہروں پر مسکراہٹ ہوتی ہے. اور ہمارے بچے اے سی سے نکل کر اے سی میں بیٹھتے ہیں, بہترین سے بہترین اسکولس میں پڑھتے ہیں. ہر دنیا کی نعمت موجود ہے اور ماتھے کے بل ختم نہیں ہوتے, مسکراہٹ چہرے پر آتی نہیں ہے. گھر آتے ہیں لگتے ہیں مسکراہٹ کسی بیگ میں ڈال کے لاکر میں ڈال کے بند کر دیتے ہیں. اس کا مطلب ہے ہمارے بچوں میں کبر آ رہا ہے اور اس کبر کا علاج کرنے کی ضرورت ہے. ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن اپنے بچوں کو سکھائیں. جتنی مائیں بیٹھی ہیں اپنے بچے کی ہر خواہش پلیٹ میں رکھ کے ان کے مانگنے سے پہلے مت پورا کر دیں, یہ ان کو متکبر بنا رہا ہے. وہ سمجھتے ہیں ہمارا حق ہے. جبھی تو آپ دیکھیں جب ماں باپ اولاد کو سمجھاتے ہیں بیٹا آلریڈی بہت ہو گیا تم پر خرچہ, بس اب بریکس لگاؤ, تو بچے کیا کہتے ہیں؟ تو آپ نے کون سا خاص کام کیا؟ آپ کا رائٹ ہے آپ کریں. یہ متکبر مزاج ہے. جب نعمت کو اپنا حق سمجھا جائے, ہمارا حق ہے کہ ہم اس طرح کے گھروں میں رہیں اور اسکول کالجز میں پڑھیں, اور سڑک پہ پھرنے والے وہ بچے جن کی ڈیسپریشن یہ ہے کہ وہ اسکولس میں جانا چاہتے ہیں لیکن ماں باپ کے پاس ریسورسز نہیں ہیں. ہمیں اپنا امتحان امتحان سمجھنا ہے. ہم نے اپنی زندگی کا بہترین استعمال کرنا ہے. ایلیٹ سمجھ کے اپنے آپ کو, قریش کی طرح اپنے آپ کو جہنم کا مزید ایلیجبل نہیں بنانا. تو قریش کا کیا کہنا تھا یا قریش کا کیا انداز تھا؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دعوت دیتے تھے ہر بات کو جھٹلا دیتے تھے, سننے کو تیار ہی نہیں ہوتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو آتا دیکھتے تھے تو وہیں صرف شروع کر دیا کرتے تھے پلاننگ. لوگوں کو کہہ دیا کرتے تھے کان بند کر کے گزر جاؤ, ان کی بات نہ سننا. اسی پکچر کو یہاں ڈپکٹ کیا گیا ہے. فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء. ایڈمٹ کریں گے ہم نے جھٹلایا اور ہم ہر بات پہ کہتے تھے ہاں ہاں اللہ نے کوئی بات نازل نہیں کی. دنیا میں دور بھاگتے تھے دین کی ڈسکشن سے. آج وہ تمام مائنڈ سیٹ جو بڑے آرام سے یہ کہتا ہے کہ ہم ہر چیز پر بات کریں گے, ریلیجن کو ڈسکس نہیں کریں گے, ہم ہر چیز کو ڈسکس کریں گے, ہم دین کی بات نہیں کریں گے, وہ سب مائنڈ سیٹ یہ بات سمجھ جائے کہ وہ اصل میں اپنے آپ کو دین سے دور کر کے اللہ کی رحمت سے دور کر رہے ہیں. یہ دین ہے, یہ میری زندگی کا حصہ ہے, یہ میری چوائسیز کا حصہ ہے, یہ میرے اٹھنے بیٹھنے کا حصہ ہے. اس کو جانیں گے تو اپنی آخرت کو سنوار سکیں گے اور دنیا کی کوالٹی کو مینٹین کر سکیں گے. آگے فرمایا ان انتم الا فی دلال ان کبیر. تو تم لوگ تو ہیوج میسیو کنفیوژن میں ہو. اس سے یہاں پر ان انتم جو آیا ہے, اس انتم سے ہی اسکالرز نے اس آیت میں کہا ہے کہ نذیر صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے, ورنہ آتا ان انتا الا فی دلال ان کبیر. انتم پلورل آیا ہے, جمع آیا ہے, جو یہ بتا رہا ہے کہ اور ڈرانے والے بھی تھے اور نصیحت کرنے والے بھی تھے اور سمجھانے والے بھی تھے. ان انتم الا فی دلال ان کبیر کے اسکالرز نے دو مفہوم کیا ہے. ایک مفہوم یہ ہے کہ یہ اہل جہنم ہی کا کانورسیشن کا اگلا جملہ ہے کہ ہاں جب بھی کوئی نذیر آتا تھا ہم ہر ایک کو یہی کہتے تھے کہ تم خود گمراہ ہو, تم میسیو کنفیوژن کا شکار ہو. तो एक राय यह है मुफस्सिरून की कि यह अहले जहन्नम ही कह रहे हैं, फकद्दबना से आगे उन्हीं का जुमला कंटिन्यू हो रहा है। एक मुफस्सिरून की राय यह है कि इन अंतुम इल्ला फी दलालिन कबीर, ये फरिश्तों का कोट है कि जब वो अपनी बात कह देंगे कि हमारे पास तो नज़ीर आया था, उसने बड़ी मेहनत से नसीहत की, हम ही ने झुटला दिया, तो फरिश्ते कहेंगे यकीनन तुम सब मैसिवली कंफ्यूज थे, तो तुम लोगों ने अपना ही नुकसान किया है। वल्लाहु आलम, अल्लाह बेहतर समझता है। आगे फरमाया आयत नंबर 10 में, वक़ालू, और वो कहेंगे, अब ये कौन कहेंगे, जहन्नुम में जाने वाले, वक़ालू लौ कुन्ना नस्मऊ औ नाक़िलू मा कुन्ना फी असहाबिस सईर, काश के हम सुनते और हम अकल से काम लेते तो हम असहाब साइर में से ना होते। यानी दो चीज़ें उन्होंने अपनी गलती मेंशन की ताकि आज सूरह मुल्क पढ़ने वाला अपनी इस दुनिया की ज़िंदगी में अपने अंदर से इस गलती को इरेडिकेट करे अगर उसके अंदर है। उन्होंने कहा काश हम सुनते और हम अकल से काम लेते। ये जो लऊ आया है अरबी ज़ुबान में, इसको कलीमतुल हसर कहा जाता है। कलीमतुल हसर यह होता है कि ऐसे मौके पर यह लऊ आता है जिसके बाद करेक्शन की कोई गुंजाइश ना रहे, नाउ यू कैन नॉट डू एनीथिंग फर्दर फॉर अ बेटर पॉइंट ऑफ व्यू। लऊ, इसलिए अंग्रेजी में, उर्दू में आप कहते हैं काश, एक वक्त गुजर गया, अब यह बेहतर नहीं हो सकता। तो जहन्नमी इस वक्त अपने रिग्रेट को, अपने हसर को मेंशन करेंगे कि अब काश हमने ये दो काम किए होते। यानी इससे क्या पता चल रहा है, वेरी प्रैक्टिकल थिंग, सुनना इंसान के अंदर एक प्रोसेस को स्टार्ट करता है। आप जो सुनते हैं, जस्ट ऐड द वर्ड, आप जो सुनते हैं वो आपको एक थिंकिंग पैटर्न देता है। आपके कानों से जो कुछ आपके दिमाग तक जाएगा वो आपको एक थिंकिंग प्रोसेस देगा। इन्होंने क्या कहा है, हम सुनने को तैयार नहीं थे, काश हम सुनते और अकल से काम लेते। लौ कुन्ना नस्मऊ औ नाक़िलू, मुफस्सिरीन कहते हैं इस आयत में एक ह्यूज वार्निंग है और एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। वार्निंग और ब्लेसिंग किस तरह से, वार्निंग ऐसे है कि जिसने अब तक तौबा नहीं की और वो कुरान सुनता नहीं है, वो कुरान सुनना शुरू कर दे। जो अब तक बगैर सोचे समझे चीज़ों को सुनता है, अब वो सोच समझ कर चीज़ों को सुने, ये वार्निंग है। ब्लेसिंग कैसे है, सब उन लोगों के लिए ब्लेसिंग है जो इस बात पर परेशान होते हैं कि हम अपनी औलाद को दीन की तरफ कैसे लेकर आएं। सब वो लोग जो आज दीन से दूर भाग रहे हैं, सब वो यूथ जिसके लिए दीन सबसे लास्ट लिस्ट में एक ऑप्शन है, सब वो बच्चे जिनके लिए उनके स्कूल और उनकी यूनिवर्सिटीज और उनके प्रोफेशंस और उनके दोस्त और उनकी चॉइसेस और उनकी टेम्पटेशंस प्रायोरिटी पर हैं, रिलीजन की बात में फर्ज पूरा कर तो रहे हैं, क्यों पीछे पड़ जाते हैं। हम नमाज पढ़ तो लेते हैं, जब आप सिर्फ फर्ज पर स्टिक करते हैं तो ये मैं आपको बता दूं, आप वहां पर जमे नहीं रहते, आपको ब्रेक्स लगती नहीं उस जगह पर। सिरात मुस्तकीम वो रास्ता है जिस पर हमने कई मरतबा बात की है, दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ रास्ता जो वर्टिकल ऊपर जा रहा है। सूरह फातिहा आप में से जिन लोगों ने मेरे साथ की थी, हमने बहुत तफसील से इस पर बात की थी। सिरात मुस्तकीम वो रास्ता है जो वर्टिकल पोजीशन पर जा रहा है, अगर आप इसमें रुकेंगे तो आप इस जगह एक जगह पर स्टैग्नेंट नहीं रहते, या तो आप गिरते हैं या आपको आहिस्ता आहिस्ता ब्रेक लगती है और आप पीछे आना शुरू हो जाते हैं। तो जो बच्चे ये कहते हैं हाँ तो हम फर्ज पढ़ तो रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता उनके पांच वक्त की नमाजें सिर्फ जुम्मे पर आ जाते हैं, फिर जुम्मे की नमाजें ईद पर आ जाते हैं, फिर ईद की नमाज भी कभी होती है और कभी नहीं होती। इस तरह के तमाम बच्चे, इस तरह के तमाम मुसलमान जिनके लिए दीन का नाम सुनना नाकाबले बर्दाश्त है, ऐसे लोगों के लिए हमारे पास एक खुशखबरी है इस आयत में। वो ये है कि अगर आप उनको सुनाना शुरू कर दें, और सुनाना मतलब खरी खरी नहीं, अगर आप उनको कुरान सुनाना शुरू कर दें, तो एक इसके अंदर बेहतर पहलू, पॉजिटिव पहलू यह है कि वो उस डायरेक्शन पर सोचना शुरू कर सकते हैं। हाँ, सुनाना कैसे है, दिस विल वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। माँ होते हुए हो सकता है आपकी बात उनको समझ आती हो तो फिर आप बात करेंगे, आपकी नहीं समझ आती तो आप किसी क्लास में भेजेंगे, क्लास में नहीं जाते तो आप किसी की बात सुना देंगे। एक घंटे का लेक्चर नहीं सुन सकते हैं, दो मिनट की बात सुना देंगे, बट यू हैव टू ट्राई कि आपके बच्चे सुने, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो शौहर हों, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, चाहे वो कोई भी इंसान हो। हर नाफरमान इंसान इस दुनिया में अल्लाह के रास्ते की तरफ पलट सकता है अगर वो अल्लाह के कलाम को सुनना शुरू कर दे। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ द प्रोसेस ऑफ लिसनिंग। जो कानों की खिड़की से दिमाग तक जाता है वो इंसान की अकल को ट्रिगर करता है। जब सुनने का दरवाजा बंद हो जाएगा, याद रखें, जब दीन सुनने के दरवाजे बंद हो जाते हैं तो दीन के रास्ते पर सोचने के दरवाजे भी बंद हो जाते हैं। जितना दीन जिंदगी में खुलता है, जितना दीन की पुकार कान पर पड़ना शुरू हो जाती है, इंसान इंटेलेक्चुअली दीन से जुड़ने लग जाता है। और जो इंसान इंटेलेक्चुअली दीन से जुड़ता है उसी के अंदर इमोशनल अटैचमेंट दीन के लिए आती है। तो स्कॉलर कहते हैं अन्नल मकसूद असमा उ तदब्बुर व तफक्कुर। अल्लाह क्या चाह रहा है दुनिया में इंसान क्या सुने, सोच समझ कर सुने, तदब्बुर के साथ सुने, पॉन्डर करता हुआ सुने, वक्त लगाकर सुने। तो इसके अंदर एक इंसेंटिव ये है कि अगर लोग दीन से इस वक्त दूर हैं तो उनको दीन के करीब लाने का तरीका ये है कि उनको दीन सुनाया जाए। दीन पढ़ाया नहीं जाता उस तरह से कि किताब दे दी, आप पढ़ लें, आपको समझ आ जाएगी। अब तो वैसे ही रीडर बहुत कम हो गए हैं, पढ़ने वाले लोग बहुत कम हो गए हैं। तो यहाँ से एक एंगल ये मिल रहा है, मैक्सिमम लोगों को कुरान सुनाने की तरफ लेकर आइए, उनको क्लासेस में अपने साथ लेकर जाइए, उनको व्हाट्सएप पर कुछ सुनाइए, जो आप उनसे बात कर सकते हैं बैठ के आप उनसे बात कीजिए, ताकि उनके अंदर मोटिवेशन डेवलप होना शुरू हो। और अपने बच्चों के लिए भी इसी फिलॉसफी को जहन में रखें। ये अमल जहन्नुम वालों का क्यों हुआ कि उन्होंने कहा कि हम सुनते नहीं थे, काश कि हमने सुना होता और अकल से काम किया होता। क्या सब बहरे थे दुनिया में? हाँ, डेफ थे सारे, दुनिया में सुनाई नहीं देता था। नाउ गो बैक ऑन आयात। जब भी कोई शैतान, नाफरमान शैतान, शैतान नाफरमानी होते हैं, नाफरमान जिन, जब भी कोई जिन आसमानों में रिस्ट्रिक्टेड जगहों पर जाने की कोशिश करता है तो अल्लाह क्या करता है? अल्लाह उनको रजम करता है फरिश्तों के जरिए, उनको जो है वो स्टार्स के जरिए वहां से, आग के जरिए वहां से दूर किया जाता है। जब ये जिन्नात, जब ये शैतान, जब ये नाफरमान जिन आसमान से रजम किए जाते हैं तो इनका सारा गुस्सा और जेलेसी है किसके लिए? असल में इंसानों के लिए। वहां से रजम होते हैं तो जमीन पर आकर अपनी एक्टिविटी शुरू कर देते हैं, और जमीन पर जब आकर अपनी एक्टिविटी करते हैं तो अल्लाह के बंदों के साथ जिस चीज को ये सबसे पहले अडॉप्ट करते हैं वो ये है कि ये अल्लाह के बंदों को कुरान सुनने से दूर करते हैं। सबसे पहली चीज कुरान है ही ऑडियो एक्सपीरियंस। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को आकर कुरान सुनाया, लिखा हुआ उनके हाथ में नहीं पकड़ाया। इट वॉज कम्प्लीटली एन ऑडियो एक्सपीरियंस। सहाबा सुनते थे, फिर एक दूसरे को पढ़ाते थे, फिर आगे फिल्टर डाउन करते थे। कुरान का मिजाज सुनने वाला है। ये सारी बातें अगर आपको लिखी हुई मिलेंगी कभी आपको पढ़कर वो इम्पैक्ट नहीं आएगा जो सुनकर इम्पैक्ट आ रहा है। कुरान एंड इस्लाम इज कम्प्लीटली एन ऑडियो एक्सपीरियंस। तो ये शैतान क्या करते हैं, ये सबसे पहले अल्लाह के बंदों को इस सुनने की एक्टिविटी से दूर करते हैं ताकि बंदा जो है वो आगे सोच ना सके। तो ये इंसानों को फिर क्या करते हैं, जब ये दूर करते हैं कुरान सुनने से तो कैसे दूर करते हैं? आपके कानों में आके अपनी उंगलियां डाल देते हैं, क्या करते हैं? ऑल्टरनेट लिसनिंग। ये कुरान नहीं सुनने देते। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुरान खोलेंगे फिर कुरान बंद हो जाएगा, आप कुरान खोलेंगे फिर कुरान बंद हो जाएगा, नहीं। इसका मतलब ये नहीं है आप अपना मोबाइल में प्ले करेंगी कुरान की तिलावत और फिर ऑफ हो जाएगी, आप प्ले करेंगी स्टॉप हो जाएगी। ये तो हमारी फेवरेट हॉबी है। हाँ, जिन ऐसे ही आता है, जिन के बारे में और बताइए। ऐसी बात नहीं है ना, वो आपका ऑटो प्ले बंद करेगा ना वो आपका मुसहफ बंद करेगा। ही विल गिव यू ऑल्टरनेट लिसनिंग। वो आपको एंटरटेनमेंट की दुनिया में इन्वॉल्व करेगा। आज की कौम को, आज की उम्मत को और हमेशा से इंसानियत को कुरान सुनने से दूर करने के लिए शैतानों ने जिस एक्टिविटी को इस्तेमाल किया है वो है एंटरटेनमेंट की दुनिया। इनके कानों में वो डालो जिसके बाद इनको कुरान सुनना फ़ायदा ना दे। इनको इतना एडिक्टिव कर दो म्यूज़िक के साथ, सॉन्ग्स के साथ, कि उसके बाद उनको लगे दिस इज पार्ट ऑफ मी। बहुत लोग ये सवाल करते हैं ना, म्यूजिक हलाल है या हराम है, हम सबको अभी तक कन्फ्यूजन ही है, बिल्कुल जैसे बर्थडेज में हमें कन्फ्यूजन ही है। देर इज नो कन्फ्यूजन, ये शैतानी अमाल हैं, कम्प्लीटली शैतानी अमाल हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़ाफीर से अपने आप को दूर किया, आपके सहाबा ने तमाम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से अपने आप को दूर किया, देर इज जस्ट वन एक्सेप्शन, दफ की है, वन साइडेड दफ, नॉट दैट ढोल जो हमारी शादियों में इस्तेमाल होता है, द टू साइडेड वन, वन साइडेड दफ, उसकी सिर्फ इजाजत है, वो भी लिमिटेशंस के साथ इजाजत है, बैरियर्स के साथ इजाजत है, सर्टेन एनवायरमेंट्स में इजाजत है। पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री बंद हो जाए अगर इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इन चीजों को देखा जाए। शैतान कानों में वो म्यूजिक डाल देता है जिसके बाद कुरान सुनने का दिल नहीं करता, वो इतना बिजी कर देता है आंखों को और कानों को कि इंसान कुरान सुनने के लिए अपने आप को फारिग ही नहीं समझता, वो इतना ज्यादा इन चीजों में, इन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करता है। एंड दीज आर म्यूजिक, आई कैन से ऑन डंके की चोट पर 100% 200% श्योरिटी, दिस इज अ माइंडलेस एक्टिविटी। अगर मैं आप लोगों को चैलेंज कर रही हूँ, जाएं जाकर जितने भी बच्चे म्यूजिक सुन रहे हैं आज के, उनके लिरिक्स निकालिए और पढ़ना शुरू कीजिए जरा, यू विल कम टू नो कि कितने इडियट और कितने एबनॉक्शियस वर्डिंग्स हैं मेजॉरिटी गानों के, मेजॉरिटी गानों के, दे आर इन मैनी मैनी फॉरनर, जितने भी आपके बाहर के जितने भी सिंगर्स हैं, अब इनके जो लिरिक्स बन रहे हैं वो बच्चों को मोटिवेट करते हैं टू लिव अ डार्कर लाइफ, टू स्टे अ डिप्रेस्ड लाइफ, to stay in your depressed life and to go and encourage them for the suicide. जाएं निकालें lyrics और पढ़ें, जिनको बगैर सोचे समझे हमारे बच्चे पढ़ते और सुनते रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज की माएं अनपढ़ नहीं हैं, आज की माएं जो हैं वो ऐसी obsolete माएं नहीं हैं कि जिनको पता ना चले। और क्या आपके कानों में जा रहा है, अभी हमने कहा जो आप सुनते हैं वो आपकी अक्ल पर इम्पैक्ट करता है, तो इतना शैतानी एक्टिविटी ने आपको इस म्यूजिक इंडस्ट्री से एंट्रैप किया हुआ है कि अब इसके बाद कुरान सुनना अच्छा नहीं लगता। सारा दिन गाड़ी में म्यूजिक चलता रहे, पूरा खानदान कुछ रहता है, इधर अम्मा ने जाकर अपना कोई लेक्चर लगाया, सबकी पेट के अंदर से चीख निकलती है, हालांकि साउंड बॉक्स पेट में नहीं होता है बट वो पेट के अंदर से चीख निकलती है, बंद करें हमने नहीं सुनना, हर वक्त लेक्चर स्टार्ट। ये क्या है, शैतान के साथ ही, शैतान ने इतना ओवर पावर कर लिया कि अब कुरान सुनने का दिल नहीं करता, कुरान सुनने का दिल नहीं करता। बाज लोग कहते हैं ना आई एम एडिक्टेड टू म्यूजिक, आप कभी इंटरव्यू सुने खुद सिंगर्स के, वो खुद कहते हैं वी आर एडिक्टेड टू म्यूजिक बिकॉज वी डोंट वॉन्ट टू थिंक। आप इनके जुमले सुने और आप कुरान पढ़ें, आप कहते हैं सुभान अल्लाह, एक एक जुमला इस कलाम का बरहक है, सच्चा है। लोग कहते हैं मैं म्यूजिक छोड़ नहीं सकती, छोड़ती हूँ तो डिप्रेस हो जाती हूँ, कहते हैं ना लोग, क्यों डिप्रेस होती हैं, कभी सोचा इस बात पे? क्यों हम बिल्कुल शीप लाइफस्टाइल गुजार रहे हैं, जो सब कहते हैं वही सब हम करते हैं, जो सब करते हैं वो हम करते हैं, जो सब पहनते हैं वो हम पहनते हैं, जो सबका लाइफस्टाइल वो हमारा लाइफस्टाइल, जो सबकी चॉइसेस वो हमारी चॉइसेस। ये क्यों लोग कहते हैं कि मैं म्यूजिक सुनना छोड़ती हूँ तो मैं डिप्रेस हो जाती हूँ, कभी किसी ने नहीं सोचा, कभी किसी के जहन में सवाल नहीं आया? जब से मुसलमानों ने सोचना छोड़ दिया तब से मुसलमानों का जवाल शुरू हो गया, हालांकि अल्लाह ने मुसलमानों को कुरान में कई जगह पर दावत दी है, अफला ततफक्करून लअल्लकुम तअक्लून अम अला कुलूबिन अक्फालुहा, क्या तुम तदब्बुर नहीं करते कुरान पर, क्या तुम्हारे दिलों के ऊपर ताले पड़े हुए हैं? सोचो ये कहना कि अगर मैं म्यूजिक नहीं सुनती तो मैं डिप्रेस हो जाती हूँ, कभी पूछें किसी से क्यों डिप्रेस हो जाती हूँ? चले अगर आपको लगता है कि आप म्यूजिक सुनती हैं और अगर ना सुने तो आप उस दिन बुझी बुझी उदास उदास सी रहती हैं, जरा अपने आप से सवाल करें कि आप क्यों ऐसी उदास होते हैं। किसी से आप सवाल करें तो वो क्या कहेगा, 90% और आपको भी यही जवाब मिलेगा कि फिर मुझे अपनी जिंदगी में जितनी भी शॉर्टकमिंग्स हैं, जो महरूमियां हैं, जो परेशानियां हैं, वो सब याद आने लग जाती हैं। ऐसा ही होता है ना, म्यूजिक आपके लिए एक ड्रग है जो आपको हकीकत से दूर कर देता है, वो आपको ये भुला देता है कि आप अशरफुल मखलूक हैं, वो आपको ये भुला देता है कि आप इस दुनिया में सिर्फ इबादत के लिए आई हैं, वो आपको ये भुला देता है कि आपको अल्लाह की बंदी बनना है, वो आपको ये भुला देता है कि अगर ये सफरिंग्स हैं देन देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। ये सोचना कि मेरी जिंदगी में ये सफरिंग्स हैं, मेरी जिंदगी में क्या परेशानी है, मेरी जिंदगी का मकसद क्या था और मैं कहां लग गई हूं, ये सोच तो मुबारक है। दिस इज मुतबारिक, इसलिए कि जिसको ये सोच आएगी वही अगला सवाल उठाएगा, तो फिर मैं अपनी जिंदगी को ठीक कैसे करूं, फिर मैं अपना माइंडसेट स्ट्रांग कैसे करूं, फिर मैं अपने विजन को तलाश कहां से करूं, फिर मैं क्या जानूं और क्या सुनूं कि मुझे सही बात समझ आनी शुरू हो जाए। शैतान ये नहीं चाहता, तो शैतान कहता है चलो दोबारा से लगाओ अपने आईफोन के आई प्लग्स अपने, और लग जाओ दोबारा से गाने सुनने में, ताकि तुम सुन ना सको कुरान की बात, और जब कुरान नहीं सुनोगे तो अकल सही रास्ते पर काम नहीं करेगी। फिर क्या जिन लोगों को म्यूजिक में इन्वॉल्व करता है वो सिर्फ म्यूजिक की हद तक रहते हैं या आगे भी बढ़ते हैं? आगे भी बढ़ते हैं, और हमारा माशरा उसकी तस्वीर बन गया है। आज से 10-15 साल पहले इतना कॉमन ड्रग एंड अल्कोहल हम सोच नहीं सकते थे। मैं 20 साल पहले इमेजिन नहीं कर सकती थी कि यूनिवर्सिटीज के अंदर ड्रग ट्रैफिकिंग ऐसे होगी, अल्कोहल इस तरह से सर्व होगी घरों के अंदर, पार्टीज के अंदर कि पूरा टेबल सेट है, रेस्टोरेंट्स के अंदर। हमें नहीं पता चलता है अब जिन रेस्टोरेंट्स में हम जाकर खाना खाते हैं कहाँ कहाँ शराब सर्व होती है, जिन ग्लासेस के अंदर हम पीते हैं हमें क्या पता उस ग्लास में हमसे पहले किसको शराब सर्व की गई है, कुछ नहीं पता। एवरीथिंग इज ब्लेंडेड, फितना, अंदाजा ही नहीं है हमें। हमारे बच्चे जिन घरों में जा रहे हैं दोस्तों के नाम पर शराबें सर्व होते हैं, स्कूल पार्टीज होती हैं अल्कोहल सर्व होती है, गैदरिंग्स होती हैं टीनेजर्स की अल्कोहल सर्व होती है, और अल्कोहल सर्व करने के लिए भी ऐसे नहीं कुछ छुप छुप के सर्व हो रही है, प्रॉपर टेबल सेटिंग्स होते हैं, प्रॉपर ग्लासेस होते हैं, प्रॉपर बॉटल्स होती हैं, फुल डेकोरम के साथ, फुल डेकोरेशन के साथ। एक जमाना था कि जहां जहां डिफेंस के अंदर अल्कोहल की दुकानें खुली हुई थी लोग डरते डरते थोड़ा थोड़ा शटर खोल के शराबें बेचा करते थे, मुझे यहां का नहीं पता पर डिफेंस में इट्स वेरी कॉमन। अब तो वहीं खड़े होकर बाहर ही शराब की दुकान के बाहर ही सब पी रहे जैसे कोई पेप्सी की बोतल पी रहे, और किसी को डर नहीं लगता। एक टाइम पे बिकॉज हमारे घर के बहुत करीब थी और बहुत शोर मचाने के बावजूद वो बंद नहीं हुई, बहरहाल किसी क्रिश्चियन ने खोली हुई लाइसेंस लेके, तो आप बंद नहीं करा सकते उसको, बट जो खरीदता है वो थोड़ी पूछते हैं आप मुसलमान है कि क्रिश्चियन है। एक वक्त में जब लोग वहां पीते थे तो ब्राउन पेपर के अंदर उनकी बोतल हमेशा होती थी, हमेशा हमने ऑब्जर्व किया, अब कोई ब्राउन पेपर नहीं है, किसी को डर नहीं लगता। वहीं खड़े होकर हमने एक हाथ में उनके नेस्ले की बोतल होती है, एक हाथ में शराब की बोतल होती है, वो उसमें मिक्स करते हैं और पीते हैं। ये हाल है ड्रग, किस स्कूल के अंदर ड्रग ट्रैफिकिंग नहीं हो रही है? सारे सेक्युलर बड़े स्कूल्स, सब स्कूल्स मैनेजमेंट को मालूम है, ऐसी कोई बात नहीं है। जब आप म्यूजिक में आगे बढ़ेंगे ये दो चीजें साइमल्टेनियसली साथ आएंगी, अल्कोहल एंड ड्रग्स, और इसके साथ तीसरी चीज इंटरकनेक्टेड जिना। यह हाल हो रहा है इस वक्त शैतानी एक्टिविटीज का, और शैतान इस तरह से हमारी यूथ को तबाह कर रहा है कि अब जब आप म्यूजिक सुनते थे तो आपने सिर्फ अपने आप को कुरान सुनने से दूर किया था, आप सुन नहीं रहे थे, जब एक दफा आप ड्रग्स में आ गए, अल्कोहल में आ गए, अब आप सुन भी लेंगे कुरान, नो इम्पैक्ट, अब आप देख भी लेंगे अल्लाह की आयात, नो इम्पैक्ट। उम्रों पर उम्रे हो रहे हैं और जिंदगियों में लाइफस्टाइल में गुनाह खत्म नहीं हो रहे, इसलिए के साथ साथ जिंदगियों में बाकी 11 महीने शराब जो शामिल है, ड्रग्स जो शामिल है। तो अल्लाह ताला ने यहां पर इस एक्टिविटी को मेंशन किया है, कुरान में आता है ज़य्यन लहुमुश शैतान, शैतान ने उनके अमाल को उनके लिए डेकोरेट कर दिया है, इसलिए फिर ये किस चीज का जहन्नुम का ईंधन बनेंगे, मा कुन्ना फी अस्हाबिस सईर, आयत नंबर 5 में आया था जहां था कि शैतानों को रजम किया जाता है, वा अतदना लहुम अज़ाबस सईर आया था, और यहां आया है मा कुन्ना फी अस्हाबिस सईर, दोनों के दोनों को, जिन्नात नाफरमान हो या इंसान नाफरमान हो, दोनों के दोनों को अल्लाह ताला जहन्नुम की आग में डाल देंगे। आगे फरमाया आयत नंबर 11, फअतारफू बिज़म्बिहिम फसुहक़ल लिअस्हाबिस सईर, तो वह अपने गुनाह को एक्नॉलेज करेंगे तो उनके लिए दूरी है जो कि आग में जाने वाले हैं। बिज़म्बिहिम आया है, ज़म्ब का लफ्ज अरबी जुबान में आता है, इनिशियली ज़म्ब का लफ्ज इस्तेमाल होता था जानवर की दुम के लिए, टेल ऑफ एन एनिमल, फिर इस लफ्ज का इस्तेमाल होने लग गया किसी एम्बेरसिंग चीज के लिए, फिर इस लफ्ज को इस्तेमाल किया गया कुरान ने, और कुरान से पहले अरबिक लिटरेचर ने इसको इस्तेमाल किया गुनाह के लिए, इसलिए कि गुनाह सोर्स ऑफ एम्बेरसमेंट होगा आखरत में इंसान के लिए। गुनाह के लिए और लफ्ज भी आते हैं, जैसे जनाहुन आता है, इथमुन आता है, दम आता है, ऐसा गुनाह जो आपको एम्बेरस कर दे, बहुत ज्यादा आपको एम्बेरस करे, चाहे वो एम्बेरसमेंट आपको दुनिया में महसूस करनी पड़े या वो एम्बेरसमेंट आपको आखरत में महसूस करनी पड़े। तो कहा गया फा अतारफू बि ज़म्बिहिम, ये अपने गुनाह का एतराफ करेंगे। हर जहन्नमी को जहन्नम के सामने खड़े होकर अपना दुनियावी पोटेंशियल समझ आ जाएगा, मैं तो केपेबल थी कि मैं जन्नत में चली जाती, मैं केपेबल थी मैं अल्लाह की रहमत के लिए एलिजिबल हो जाती। आप सोचें, आपकी उम्र है 24 साल, आप मैथमेटिक्स में PhD कर रही हैं, सही? चलें 24 से ज्यादा, PhD कौन करेगा 24 साल में, ऐसा अफलातून, 26 साल, और 26 साल में आप PhD कर रही हैं मैथमेटिक्स में। आपके बच्चे का पेपर है क्लास 3 का मैथ्स का, वो कहता है अम्मा मुझे सॉल्व करके दिखाएं। PhD कर रही हैं आप मैथमेटिक्स में, आपके बच्चे का पेपर है ग्रेड 3 का मैथमेटिक्स का, और आप उसको सॉल्व करती हैं तो फेल हो जाती हैं। हंसी आएगी अपने ऊपर? आ रही है ना हंसी? जहन्नमी भी अपने ऊपर ऐसी ही तंजिया हंसी हंसेंगे। इसलिए कि फा अतारफु बिज़म्बिहिम, एतराफ इस बात का कि हम तो एलिजिबल थे कि हम अपने आप को जहन्नम से दूर रखते, हमें ताकत मिली थी, सेहत मिली थी, अकल मिली थी, सेंसेस मिले थे, नेमतें मिली थी, लेकिन हाल यह है कि एम्बेरसमेंट का कि अपने आप को फेल कर लिया उस जगह पर जहां पास हो सकते थे। तो जहन्नमी अपनी गलतियों को एडमिट करेंगे, जहन्नमी अपने पोटेंशियल्स को याद करेंगे। बास स्कॉलर्स लिखते हैं जहन्नुम के सामने हर अहले जहन्नुम के लिए उसके पोटेंशियल वाजे होना शुरू हो जाएंगे जो अल्लाह ने उसको दुनिया में दिए थे, कि मुझे अल्लाह ने कितनी नेमतें दी थी और मैंने कितना वक्त ज़ाया किया। फा अतारफू में जो फा आया है इसको कहते हैं फा उला। फा उला क्यों आता है? फसीहतुन। फा उला का मतलब क्या है? फा अतारफू अरबी जुबान में इस फा के लिए कहते हैं फा फसीहा, जिससे डिराइव ये किया गया है माने अल्लाह ताला हर इंसान को उसके हर गुनाह के बाद तौबा की अपॉर्चुनिटी देते हैं। ये रहमान की मोहब्बत है, अल्लाह हर इंसान को उसके गुनाहों के बाद उसको तौबा की अपॉर्चुनिटी देते हैं। कभी कभी यह तौबा की अपॉर्चुनिटी किसी फिजिकल तकलीफ की वजह से मिल जाती है। बाज़ों का इतने आप देखते हैं बहुत से लोग किसी बीमारी आने के बाद से कितनी तौबा करना शुरू कर देते हैं, तो ये अल्लाह की तरफ से रहमत होती है कि अल्लाह उनको मौत से पहले उस बीमारी के जरिए उनको गुनाहों से पाक कर रहा होता है। तो तौबा की अपॉर्चुनिटी हर एक को मिलती है, जो इसका फायदा ना उठाए, सिर्फ इस आयत में उनका जिक्र है कि वो जहन्नुम के सामने खड़े होकर एतराफ करेंगे अपने गुनाह का। और ज़म्ब वाहिद आया है, इसकी जमा आती है ज़ुनूब। इससे क्या पता चल रहा है? मुफस्सिरून कहते हैं एक गुनाह था, एक गुनाह, और अगर आयात के कॉन्टेक्स्ट से देखा जाए कुरान ना सुनने का गुनाह, दीन पर वक्त ना लगाने का गुनाह, एक गुनाह था, लेकिन एक गुनाह की वजह से पूरा लाइफस्टाइल इफेक्ट हुआ, इतना इफेक्ट हुआ कि शैतानी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो गए, इतना इन्वॉल्व हुए कि तौबा करने का मौका ना मिला, तौफीक ना मिली, इतना इन्वॉल्व हुए कि जहन्नुम के मुंह पर आकर खड़े हो गए और अब एतराफ करेंगे। लेकिन अब एतराफ का कोई फायदा नहीं होगा, बिल्कुल जैसे फिरौन को अपनी मौत सामने देखकर, जिब्राइल अलैहिस्सलाम को सामने देखकर तौबा की तौफीक मिली थी। हदीस में आता है जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उसके इस जुमले पर जिसको कुरान ने मेंशन किया है सूरह यूनुस में, उसके ऊपर कीचड़ उठाकर उसके मुंह पर मारी थी। सूरह यूनुस की आयत नंबर 90 में आता है हत्ता इदा अदराकहुल गरक, जब फिरौन को पता चल गया कि अब तो मौत सामने है, गरक ही होना है, समुन्द्र मिल रहा है, कौला बोला आमन्तु अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लज़ी आमनत बिही बनो इस्राएल, मैं बनी इस्राएल के इलाह पर ईमान ले आया, अल्लाह नहीं कह सका, ला इलाहा इल्लल्लज़ी, जिसने वॉलंटेरिली पूरी जिंदगी अल्लाह का कलमा बुलंद नहीं किया, अल्लाह के कलमे के तकाजे बुलंद नहीं किए, मौत के वक्त उसकी जुबान पर अल्लाह का लफ्ज नहीं आ सकता। इसकी तौबा तो इस वक्त भी कबूल नहीं होनी थी, लेकिन उलमा कहते हैं इस मौके पर भी इसको اللہ بولنے کی توفیق نہیں ملے. اور ہر انسان جو ساری زندگی اپنے آپ کو اللہ کا نافرمان بنائے, حدیث میں آتا ہے چار مواقع ایسے ہیں جن کے بعد انسان کی توبہ قبول نہیں ہوگی. اس میں سے ایک ہے دجال کا واضح ہو جانا, یعنی دجال جب اپنی پوری فزیکل فارم میں سامنے اپیئر ہو جائے گا. دوسرا ہے نزول عیسیٰ, عیسیٰ علیہ السلام جس وقت نازل کر دیا جائیں گے. تیسرا ہے طلوع الشمس من مغربها, جب سورج اپنے مغرب سے نکلے گا, مغرب سے رائز ہوگا. اور چوتھا ہے غرغرات الروح, جب موت, جب روح حلق تک پہنچ جائے گی. غرغرات الروح, دا لاسٹ گارگل آف دا بریت, جس میں روح آخری نکلتی ہے. پیروں سے نکلنا شروع ہوتی ہے جان, اور ناک اور منہ سے باہر نکلتی ہے. تو جب وہ ناک اور منہ تک آتی ہے اور اس جگہ سے حلق سے ساؤنڈ باکس سے کراس کرتی ہے, تو ایک آپ کو گارگلنگ ساؤنڈ آتی ہے, غرغرات الروح. اس موقع پر اگر توبہ کی جائے تو توبہ قبول نہیں ہوتی. تو بتا دیا ایسے تمام لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فسحقا لأصحاب السعیر, اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے شدید لانت زدہ عذاب تیار کیا ہے. پہلے آیا تھا خاصی ان کے اندر آپ کو بتایا تھا دھتکارے ہوئے, دور کیے ہوئے نفرت کے ساتھ. اور سحقن عربی زبان میں آتا ہے وہ جو کاسٹ آف کیے ہوئے ہیں, کرسٹ کیے ہوئے, یہ اس سے بھی زیادہ ایکسٹریم ڈگری ہے. اللہ تعالیٰ ان کو جہنم کے اندر تنہا چھوڑ دے گا. اس مقام پر آ کر اس پیسج کا جو پورشن ہے کافر کا وہ ختم ہوتا ہے, اور پھر اگلی آیت میں مومن کا ذکر آئے گا. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں سے اپنی نافرمانیوں کے تمام اعمال کو نکال دے. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری اولادوں کو ایمان کی طاقت اور ایمان کا سٹیمنا عطا فرمائے. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہم کبھی شیطانی ایکٹیویٹیز کا حصہ نہ بنیں. اللہ ہمیں میوزک سے دور کر دے. اللہ ہماری اولادوں کو اور ہماری اولادوں کی اولادوں کو اور تمام اولادوں کو, تمام انسانوں کو ہر طرح کی ڈرگ اور الکحل سے دور کر دے. اللہ جس کو آپ نے حرام کیا ہے اللہ ہمیں اس سے بچا لے. اللہ جس کو آپ نے معروف بنایا ہے اللہ اس کو ہماری زندگی کا حصہ بنا دے. اللہ جو تعلیمات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں اللہ ہمارے زندگی کے اندر ان کو ہمارے زندگی کا حصہ بنا دے. اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائیے. اللہ ہمارا آسان حساب لیجیے. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا, اللہم حاسبنا حسابا یسیرا, اللہم حاسبنا حسابا یسیرا, اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلیہا و اجرنا من خزی الدنیا و عذاب الاخرہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.